रात्रि क्लास चल रहा था, पांच ग्यारह 1966 पहले पेज की पांचवी लाइन में बात चल रही थी। ये बड़े ते बड़ी बड़ी ते बड़ी पढ़ाई है और वो पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, जिसे ऊंचे ते ऊंचा बरसा पाना है। बच्चे ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए, तुम जानते हो। ये नहीं जानते कौन, ये नहीं जानते तुम जानते हो, इनके फॉलोअर्स नहीं जानते किनके हैं, ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स नहीं जानते, वो नहीं जानते। वो माने जो बहुत दूर हैं दूसरे धर्म वाले, तुम जानते हो। तुम माने कौन, जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि सबसे ऊंचे ते ऊंचा इस दुनिया में कौन है। भाई भगवान है, भगवंत है। अच्छा अभी गीता में तो साफ लिखा हुआ है कि भगवान वाच, मैं तुझे राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में ये अक्षर बड़े क्लियर लिखे हुए हैं। अभी जो वो पाठशाला पढ़ते होंगे उसमें जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम रमणीक रखा है। ऐसे तो नहीं है, लिखा नहीं है कि स्त्रियां और पुरुष पढ़ते हैं या बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं, पता नहीं, गोप और गोपियां, ये तो कॉमन अक्षर है ना। कोई भी स्कूल में, पढ़ाई में, कॉलेज में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि गोप और गोपियां पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, गोप गोपियों का क्या मतलब,
भगवान से कुछ संबंध होते हैं।
जो बाप टीचर सदगुरु के रूप में भगवान आता है तो प्रेम टीचर के रूप में पढ़ाता है, उसके साथ गुप्त संबंध रखने वाले हो। स्टूडेंट तो हो, राजयोग की पढ़ाई तो पढ़ते हो, कॉलेज के स्टूडेंट कौन जास्ती पढ़ते हैं बताओ। आज की दुनिया में जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें मेल अच्छा पढ़ते हैं या फीमेल अच्छा पढ़ते हैं? है फीमेल अच्छा पढ़ते हैं। बुड्ढे बुड्ढे तो बुड्ढे बुड्ढियां तो पढ़ते नहीं है। आज की जो दुनिया भी कॉलेज हैं, उनमें बुड्ढे बुड्ढियां पढ़ते हैं, है? वो पढ़ते नहीं है। कौन पढ़ते हैं? है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें कौन पढ़ते हैं? अरे मेल पढ़ते हैं जास्ती या फीमेल जास्ती पढ़ते हैं? पढ़ते तो मेल भी हैं, लेकिन फीमेल अच्छा पढ़ती है। तो उसमें कभी भी गोप और गोपियां अक्षर काम में नहीं आता है कि पढ़ने वाले गोप हैं। गोप माने गुप्त, गोपियां माने गुप्त, ऐसे नहीं कहते हैं। गोप और गोपी अक्षर कभी सतयुग में काम में नहीं आता है। क्या वहां गुप्त रहने की दरकार है? है सतयुग में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ाई तो पढ़ेंगे ना, तो उनको वहां गुप्त रहने की दरकार है? है नहीं? और यहाँ क्यों
है?
क्या ज्यादा? हाँ, इसे दुनिया में सारे भिखारी भरे पड़े, उनकी जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि दिखाई देती है। तो उनकी खराब नजरों से बचने के लिए कैसे पढ़ते हैं? गुप्त रूप में पढ़ते हैं। पढ़ने वाले भी गुप्त और पढ़ाने वाला भी गुप्त। और शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है? पांडव कैसे घूमते थे भारत में? है गुप्त रूप में घूमते थे। और ऐसा कोई स्कूल होता ही नहीं है जिसमें एम ऑब्जेक्ट भी हो और उसमें बुढ़ियां हैं, बुढ़े हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। यहाँ तो देखो सब पढ़ते हैं। ऐसा वंडरफुल स्कूल कभी होता ही नहीं है। 5000 वर्ष की इस चतुर्युगी में ऐसा वंडरफुल स्कूल कभी नहीं होता जैसा अभी संगम युग में होता है। सबसे पूछो, बुढ़ी से पूछो, कहेंगी हम पाठशाला जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। नहीं तो गीता पाठशाला में भी बुढ़े बुढ़ियां वगैरह जाते हैं, पर उनको तो वो खुशी होती ही नहीं है कि हम ईश्वर की पाठशाला में आए हैं। जरूर एम ऑब्जेक्ट होण खाते में होना चाहिए। अरे पाठशाला का मतलब ये है कि कोई एम ऑब्जेक्ट है। सभी गीता पाठशाला में बिल्कुल प्रसिद्ध है कि यहाँ एम ऑब्जेक्ट तो है भाई। कौन सा एम ऑब्जेक्ट है? है गीता पाठशाला में किस लिए जाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। किस लिए? राजाओं का राजा बनने के लिए जाते हैं। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई स्कूल कॉलेजों में नहीं होती जो क्या बनाए, राजा रानी बनाए। यहाँ तो रानी का भी नाम ने लिया, क्या कहा, राजा बनाता हूँ। तुम सब क्या बैठे हो है, क्या बैठे हो, नर बैठे हो या नारी बैठे हो है? नर तो राजा बनेंगे और नारी है, समझते हैं हम नारी है तो क्या बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। स्वाधीन कौन होता है, राजा स्वाधीन होता है और रानी आधीन होती है। और तुम क्या हो, तुम नर हो या नारी हो बताओ है, नर है कैसे है, हमारा बाप और हम दोनों निराकार आत्मा हैं। आत्माओं का बाप निराकार, आत्माओं का बाप निराकार शिव है, और उससे हमारा संबंध क्या है, हम क्या हैं, उसके बच्चे और वो हमारा बाप है, हम सब बच्चे हैं उस बाप के या बच्चियां भी हैं है? पहले हम क्या हैं है? हम बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो नर हुए ना, क्या हुए, नर हुए ना, रुद्रमाला के मण के हैं, क्या क्या हैं, रुद्रमाला के मण के हैं। इसे ज्ञान का नाम क्या है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, क्या रुद्राणी ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो हम किसके बच्चे हैं, रुद्र के बच्चे हैं है, बताया तो हमको राजाओं का राजा बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है गीता पाठशाला में, राजाओं का राजा बनना, और गीता में भी है ही राजयोग। अभी कौन राजयोग सिखलाते हैं, ये राजाई करने का योग कौन सिखलाते हैं है? शिव बाबा सिखलाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सिखलाते हैं, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। और स्कूल कॉलेज जो भी दुनिया में हुए हैं और हैं, उनमें इतना ऊंचा लक्ष्य कोई में नहीं दिया जाता। वहाँ डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, आधीन बनाएंगे या स्वाधीन बनाएंगे, राजा आधीन बनाएंगे, और बाबा, बाबा का नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो देखो आज की दुनिया में जो राजाएं हैं, आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो भी भांति हैं, गवर्नमेंट में जो भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, सब आधीन है या स्वाधीन है, क्योंकि पढ़ाने वाले जिस धर्म से कनेक्टेड है वो राज्य है, वो धर्म के धर्म पिताएं देहाभिमानी थे या आत्माभिमानी थे, देहाभिमानी थे। और हमारा बाप हमारा सुप्रीम टीचर आत्म की स्टेज वाला है, ऊंचे की ऊंची स्टेज वाला है। तो सोचना चाहिए हमको राजयोग कौन सिखाते हैं, क्या कौन सिखाते हैं? ऊंचे से ऊंचा भगवंत राजयोग सिखाते हैं, जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला है। ये तो गीता बैठ करके पढ़ाते हैं दुनिया में, पंडित धर्मगुरु विद्वान आचार्य जो राजयोग सीख करके गए, भगवान वाच है जो राजयोग सीख कर गए उनके लिए भक्ति मार्ग में गीता पाठशाला की सुनी थी। बाकी कोई ऐसे नहीं है कि कोई पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, गीता की पाठशाला में जाते हैं वो लोग, वहां पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वहां प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा है। और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, बड़ी रायल पढ़ाई राजा ही की पढ़ाते हैं। तुमसे कोई पूछे क्या पढ़ने जाते हो, अरे राजयोग पढ़ने जाते हैं। क्या पढ़ने जाते हैं? जिस पढ़ाई में राज भरा हुआ है, वो राज की बातें सबको बताई जाती हैं क्या है? बच्चा बुद्धियों को बताई जाएंगी, उनकी समझ में आएगी नहीं? ये राज की बातें जो राजदार हैं उनको बताई जाती है, और ये है बिल्कुल सहज। राजाओं का राजा बनना, राजाओं के राजे तो होते ही हैं ये। ये तुम बच्चों को याद रखना चाहिए कि और कोई मुल्कों में ऐसे कभी भी कोई होता ही नहीं है, दूसरे देशों में, कि कोई पवित्र राजाएं हों और उनको जो अपवित्र राजाएं मत्था टेकते हों या मंदिर हों और उनको फिर वो जो पतित हुए वो जा करके मत्था टेके, ऐसा कोई दूसरे देशों में होता है? हाँ? नहीं होता है ऐसा कोई भी खंड में, बौद्धी खंड हो, क्रिश्चियन खंड हो, मुस्लिम खंड हो, कोई भी खंड में, कोई भी जगह में सिवाय भारत के ऐसा नहीं होता। अभी भी तुम जाओ कोई भी राजा के घर मंदिर में, उनके पास मंदिर जरूर होगा, वो मंदिर में राजा जरूर जाकर के माथा टेकता होगा। अब की बात बताई, अभी भी माने कभी भी है, जब ये वाणी चल रही थी उसकी बात, उस समय की बात बताई कि 66 में जो भी गिने चुने नाम मात्र के टाइटलधारी राजाएं रह गए, या कम से कम भूटान का राजा तो अभी भी है। कहाँ का राजा? ब्रू माने भाव, टांग माने टांग दी, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर किसोई, जिसकी प्रकृति के विलास मात्र से सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। वो कौन हो सकता है? वो ही रौद्र रूप धारण करने वाला है, जो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो देखो, अभी भी जो गिने चुने नाम मात्र के राजाएं रह गए हैं, उनके घर में जाओ तो मंदिर जरूर होगा। वो मंदिर में राजा जरूर जाकर मत्था टेकता होगा। राजा किसको मत्था टेकेगा? वो तो राजा है, है? अरे वो सोचेगा तो मुझे राजा बनाने वाला कौन, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन? तो जो है उसको भक्ति मार्ग में, वो राजाएं आज भी माता टेकते हैं। किसके मंदिर में राजा माता टेकते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। किसके मंदिर में? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। कौन से लक्ष्मी नारायण के मंदिर में? है
जो अपने पुरुषार्थ के बल पर नरसिंह नारायण बने,
जो नरसिंह प्रिंस बनते हैं सतयुग में। आठ प्रिंस होते हैं ना पहले, फिर बाद में प्रिंस से नारायण बनते हैं, उनको माथा टेकते हैं। उनका तो गायन ही नहीं है, गायन किन का है? नर से प्रिंस बनने वालों का गायन है, सतयुग के आठ राजाओं का, या उनको राजा बनाने वाले का गायन है? उनसे भी ऊंची स्टेज में कोई है जो उन आठों सतयुग के नारायणों को, जो पहले प्रिंस बनते हैं, प्रिंस बनने के बाद फिर नारायण का टाइटल लेते हैं, उनको भी बनाने वाला कोई है, और वो सतयुग में नहीं है। कहाँ है? हाँ, सतयुग से भी ऊंचा कोई युग है जहाँ भगवान आते हैं, जिनको ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। अभी देखो, वो भी तो महाराजा महारानी, सतयुग के आठों क्या है? महाराजा महारानी, और वो भी महाराजा महारानी। इसकी तरफ इशारा किया होगा, संगम है, संगम के लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, वो भी लग महाराजा महारानी। तो दोनों प्रकार के टाइटल धारियों में कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? है
शरीर का फर्क है, शरीर छोटे बनेगा, इसकी शरीर से बनना
नहीं, फर्क है। वो नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट इसी जन्म में, पढ़ाई पढ़ करके। क्या अंधश्रद्धा की पढ़ाई नहीं, जो भगत लोग कहते हैं या अधूरे ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि यहाँ हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और सतयुग में जाके अगले जन्म में हम राजा बने, है? ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है क्या? है कोई कहे कि हमारे कॉलेज में डॉक्टर बनाया जाता है, डॉक्टर की पढ़ाई होती है। अच्छा, कब डॉक्टर बनेंगे? अगले जन्म में बनेंगे। कोई कहे हमारे कॉलेज में इंजीनियर बनाया जाता है, कब बनेंगे? अगले जन्म में बनेंगे। अरे ऐसी पढ़ाई अंदर श्रद्धा की कोई पढ़ेगा क्या है? पढ़ाई यहाँ पढ़े है और ये शरीर छूट जाए फिर उसके बाद अगले जन्म में प्राप्ति करे, तो ऐसा पढ़ाई तो कोई मूर्ख ही पढ़ेगा। हम तो शिव बाबा के भगवान के बच्चे हैं, है? किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमें क्या सिखाता है, है? क्या सिखाता है? बिना प्रूफ और प्रमाण के हम कोई बात मानने वाले नहीं हैं। हम ऐसी अंधश्रद्धा की पढ़ाई क्यों पढ़ेंगे? हम तो वो पढ़ाई पढ़ते हैं कि यही पढ़ाई पढ़े और यही ऊंच पद पाए। तो देखो तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो भगवान से। भगवान कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है, भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। और जो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है जिन अधूरे ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। क्या वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कहलाते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण हैं। पढ़ाई तो वो भी पढ़ते हैं लेकिन उनकी मान्यता क्या है? क्या मान्यता है? जो अपन को सिर्फ बी के कहते हैं, बाप का नाम नहीं बताते, क्या कहते हैं वो? यहाँ पढ़ाई हम पढ़ेंगे और अगले जन्म में राजा रानी बने। तो बाप कहते हैं मैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तुम बच्चे भी त्रिनेत्री बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र किसको, कौन से देवता को दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। शंकर को ही रुद्र कहा जाता है। ऐसा रुद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया के जो आतताई हैं उन सब को खलास कर देता है। तो देखो वो अंधश्रद्धा की पढ़ाई पढ़ने वालों में और ये जो श्रद्धा विश्वास युक्त पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ने वालों में कितना बड़ा फर्क है। तुम पढ़ाई पढ़ते हो डायरेक्ट डर से नारायण बनने की और पढ़ाने वाला है कौन है? भगवान
शिव। भगवान
शिव नहीं, शिव तो बाप है या बाबा है, है? शिव तो आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो आत्माओं का बाप कोई मुकर्रर साकार शरीर में प्रवेश करता है, तब ढेर के ढेर संबंध भगवान के साथ बनते हैं। सर्व संबंध बनते हैं। तो बोला उसको क्या कहा जाता है, शिव बाप या शिव बाबा? बाबा माने ही साकार और निराकार का मिल। तो देखो हमको पढ़ाने वाला वो शिव बाबा है जो स्वयं भी नर से नारायण बनता है। डॉक्टर डॉक्टर को पढ़ाएगा, इंजीनियर ही इंजीनियर को पढ़ाएगा नहीं, वाशरमैन पढ़ाएगा इंजीनियर को, है? खुद इंजीनियर होगा तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाएगा। तो हमारा बाबा क्या है? है हमारा बाबा ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, जो भी नारायण नाम के टाइटल धारी हैं दुनिया में भी तो हुए हैं, किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हुए ना। तो ऐसे ही सतयुग में नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे परंपरा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई? जिसने चलाई वो है ऊंचे से ऊंचा भगवत, जिसके लिए गीता में कहा, क्या कहा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में वो मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। मैंने जो परंपरा चलाई उस परंपरा पर दुनिया के सारे मनुष्य चलते हैं। तो पहली पहली परंपरा जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, सतो प्रधान परंपरा राजाई की, वो किसने चलाई? ऐ शिव बाप ने चलाई, शिव बाप ने युक्ति बताई, शिव बाप ने रास्ता बताया। शिव बाप तो राजा बनता ही नहीं, तो युक्ति बताई, और उस युक्ति को जिसने प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले अव्वल नंबर में फॉलो किया, क्या, तो जिसने फॉलो किया उसको निमित्त बना दिया। क्या क्या निमित्त बनाया है? योग की पढ़ाई पढ़ाने के लिए। योगी किसे कहा जाता है? जो योग लगाए सो योगी, योग न लगाए तो योगी कहा जाएगा? कहा जाएगा? शिव को योगी कहेंगे है? शिव को योगी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? शिव आता है परम धाम से तो कोई तो है इस सत्य रूपी रंगमंच पर आत्मा, जिसके ऊपर फिदा हो करके आता है, वो कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर पहले पहले फिदा होकर आता है? मुरली में बोला है मैं आशिक हूं, क्या, जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, जिसका कोई कोई बाप नहीं, वो ऊंचे से ऊंचे बाप कहता है मैं आशिक हूं। किसका? कौन है उसका मासूम है? मुकर्रर रथ, भाग्यशाली रथ। क्या, कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। हारता रहे या हार जाए तो भाग्यशाली, या लगातार जीतता रहे तो भाग्यशाली है? तो बताओ शास्त्रों में किसी का गायन है? शास्त्रों में एक ही शख्सियत है जिसका गायन है, सदैव युद्धों में उसकी विजय हुई है, कभी भी उसकी हार नहीं हुई। और बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो देखो ये राजयोग की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, ऐसा राज भरा हुआ है, जो राज है पढ़ाई पढ़ाने वाला, जो ऊंचे से ऊंचा है आत्मा, वो सिर्फ है जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी होने के कारण ज्ञान का अकूट भंडार है। क्या? अकूट भंडार है, लेकिन उस अकूट भंडार से जो प्राप्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, रिद्धियां होती हैं, उन सिद्धियों रिद्धियों को प्राप्त करने वाला है,
है?
उसको अपना शरीर ही नहीं है, तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि शरीर से ही सुख भोगा जाता है, शरीर से ही दुख भोगा जाता है। तो वो सिर्फ युक्ति बताता है। क्या? त्रिकालदर्शी होने के कारण वो युक्ति बताता है कि नई सत्व प्रधान दुनिया कैसे बनती है और तमो प्रधान दुनिया कैसे बनती है। और सत्व प्रधान दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा सात्विक राजा कैसे बनेंगे, ऊंचे ते ऊंचा सात्विक राजा कैसे बनेंगे। सात्विक माने है 100% सात्विक या कुछ मिक्स। जो नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया की राजधानी बनेगी, वो 100% सात्विक राजधानी बनेगी या कुछ नीची कोटि की बनेगी? 100%। तो बनाने वाला भी कैसा होना चाहिए? 100% सात्विक होना चाहिए। अच्छा, 100% सत्य होना चाहिए। और गीता में भी क्या लिखा हुआ है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी इस संसार में अभाव नहीं होता, होता है, अभाव नहीं होता। और जो असत्य है, जो झूठ है, उसके पाँव नहीं होते, वो भाग खड़ा होता है सर पे पाँव रख करके। और सच्चा टिका रहता है कि झूठा टिका रहता है? सच्चा टिका रहता है। और सत्य
बाबा, अभी तो बाहर जो असत्य है उसका ही तो लंबा ज्योति चौड़ा ज्योति।
यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में सारी दुनिया एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ और दूसरी एक आत्मा दूसरी तरफ थी, थी या नहीं? तो जो आत्मा सारी दुनिया से टक्कर लेती है, घबराती नहीं, वो आत्मा टिकी रहने वाली है या इस दुनिया में खत्म होकर के नष्ट हो जाने वाली है? है? टिकी रहने वाली है। तो वो आत्मा अभी भी है, दुष्टों का दमन करने के लिए। परंतु ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, पहली बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। तो कब की शूटिंग की बात है, है? बताओ, यज्ञ के आदि की बात है। सन 36-37 में जो ब्राह्मणों की दुनिया ब्रह्मा के द्वारा रची गई, वो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें वो हीरों की क्षमा नष्ट हो गई। क्या हुआ है? ज्ञान के ऐसे बम्ब फटे कि वो ब्राह्मणों की दुनिया हीरों की दुनिया। नौकरी के ब्राह्मण होते हैं, उनमें से जो हीरों की दुनिया थी, क्या क्या नाम दिया? भक्ति मार्ग में भी नाम है, क्या नाम? नागासाकी और हिरोशिमा नष्ट हो गई। फिर क्या हुआ? सन 47-46 में ब्रह्मा के द्वारा दूसरी बार सृष्टि रची गई, नहीं रची गई, रची गई तो नाम बदल गया, पहले ओम मंडली नाम था, फिर बाद में ब्रह्मा के द्वारा रची गई तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ गया। जिस ब्रह्मा के द्वारा रची गई उस ब्रह्मा ने कब शरीर छोड़ दिया है? कब शरीर छोड़ा? 69 में शरीर छोड़ दिया। जैसे पहले क्या हुआ था, 42 में शरीर छोड़ दिया और 5 साल के बाद जो दूसरा ब्रह्मा आया, जो बाबा ने बोला मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, और ब्रह्मा कोई एक का नाम तो है नहीं, इसका मतलब शिव कोई एक में ही प्रवेश नहीं करते, औरों में भी प्रवेश करते हैं। तो जिस ब्रह्मा का नाम रखा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो मुखिया ब्रह्मा था वो चल बसा 69-18 जनवरी। तो देखो दूसरी बार भी विनाश शुरू हुआ कि नहीं हुआ, विघटन शुरू हो गया कि नहीं है? कोई भी धर्म होता है, धर्म पिता जब तक जीवित रहता है तब तक धर्म सही चलता है, और जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, वो काम खराब कर देते हैं कि अच्छा करते हैं? खराब कर देते, गद्दी नहीं। तो इसकी शुरुआत यहाँ होती है। 69 से दो देहधारी धर्मगुरु गद्दी पे बैठे, बस विघटन शुरू हो गया, और वो विघटन प्रत्यक्ष तब हुआ जब सन 66 में ही बाबा ने मुरली में बोल दिया था। क्या बोला था? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 76 आता है उस हिसाब से, तो 76 में फिर स्थापना शुरू हुई। एडवांस पार्टी के नाम से ब्राह्मणों का नया संगठन बनता है तीसरी बार, और पुराने ब्राह्मण जो हैं, जो अपन को बी के कहते हैं, बाप का नाम नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु बच्चे, उनसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो जानते हैं? जानते नहीं, बड़े होंगे तब जाने। तो ऐसे ही वो छोटे छोटे दुदुमुहे बच्चे, वो अपने बाप का नाम ही नहीं जानते। उन बच्चों ने ईश्वर बाप को नहीं जाना। जाना? नहीं जाना। अरे वो कैसे पहचानेंगे? उनको जन्म देने वाला जो था ब्रह्मा, दादा लेखराज, उसने बाप को पहचाना था है? जिस बाप ने उस ब्रह्मा के अंदर बुद्ध रूपी पेट में ज्ञान का बीज डाला था कि तुम सत्युगु में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हो, वर्तमान जीवन में तुम्हें ब्रह्मा का सफेद पोष का पार्ट बजाना है, ये तुम्हारे साक्षात्कार का अर्थ है। अब ये पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है तो विनाश के साक्षात्कार का अर्थ है। उनकी बुद्धि में बैठ गया। जिसकी बुद्धि में बैठा उस ब्रह्मा ने जाना ही नहीं। क्या जाना? नहीं जाना। तो ब्रह्मा ने ही नहीं जाना तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो जानेंगे? वो भी नहीं जान सके, आज तक भी नहीं जान सके। हाँ, उनमें से जो पूर्व जन्म के थे हिरोशिमा में खलास हो गया था संगठन, वो ही ब्राह्मण नंबर 12 आते जाते हैं एडवांस पार्टी में। क्या जो बाबा ने बोला मुरली में, तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाएगी, देह भान की, आत्मा की, देह की नहीं कहा, आत्मा की सारी कट उतर जाएगी, तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। किससे? डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। कौन सी बाप से सीखेंगे? शिव बाप से। डायरेक्ट शिव बाप से सीखेंगे या मनुष्य सृष्टि के बाप से सीखेंगे? किससे सीखेंगे? मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता की बात 10 साल पहले ही बता दी। इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 में वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म साबित हो जाता है। तो 76 में जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, उसको जो दुदमुहे ब्राह्मण थे उन्होंने भी मनाया, और जो समझदार ब्राह्मण थे उन्होंने भी मनाया। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या नहीं मनाया? कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया कि आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है? आत्माओं का बाप जिसे शिव कहा जाता है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, सिर्फ ज्योति बिंदु जिसका नाम शिव है, उसका शरीर है ही नहीं, वो तो अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। कब होता है प्रत्यक्ष? यादगार बनी हुई है क्या? महाशिवरात्रि। महा माने बड़ी, बड़े से बड़ी शिवरात्रि, जितनी बड़ी शिवरात्रि कभी न हुई है न भविष्य में होगी। क्या? ऐसी बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो 76 को कहें, 76 को दुनिया की बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि कहें? नहीं कहेंगे। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म हुआ, जन्म माने प्रत्यक्षता हुई, ब्राह्मणों ने पहचाना कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप, जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका बीज कौन है? क्या झाड़ में जो पहला फल निकलता है उसमें से जो बीज तैयार होता है, वो बीज पहले पहले अपने को सारे वृक्ष से डिटैच करता है या नहीं है? कि अटैच रहता है, लगाव रहता है या बेलगाव हो जाता है? है, बेलगाव हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा का मतलब क्या है? पहले अपने शरीर से नष्टो मोहा, फिर शरीर के पदार्थों से नष्ट हुआ, फिर शरीर के संबंधियों से नष्ट हुआ। तो ऐसी स्टेज जो पहले पहले प्राप्त करता है, उस आत्मा का नाम दिया मनुष्य सृष्टि का बाप। वो पहला बीज है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, परिपक्व बीज। कैसा बीज है? अपनी देह का लगाव नहीं, कि देह है, इस देह का जो पेट है उसका भरण पोषण कैसे होगा? नहीं तो मोस्टली देह के भरण पोषण के लिए, देह के संबंधियों के भरण पोषण के लिए, देह के पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो दैहिक धंधे हैं, टोटली छोड़ करके कोई ईश्वरीय धंधे में ही लग जावे सारे जीवन के लिए, न अपनी देह की परवाह करे, न देह के संबंधियों की परवाह करे, न देह के पदार्थों की परवाह करे, ये सहज है या मुश्किल है? सहज है, है? ऐसा कोई दिखाई दे रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? है जो धंधे छोड़ दिए हो, देह के पदार्थ छोड़ दिए हो, चिंता न करे क्या होगा भविष्य में, नहीं तो बाबा तो कहते अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, रोटी का टुकड़ा टुकड़ा नहीं मिलेगा, नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी सड़क पर और भूख आदमी मरते रहेंगे। तो लगाव आएगा कि नहीं आएगा? है, देह के पदार्थों के लिए, देह के संबंधों के लिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? समाज के बगैर रह सकता है या नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। यज्ञ के आदि में भी सब समाज की तरफ झुक गए थे, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा हुआ एक को छोड़ करके? हुआ या नहीं हुआ? है, सब समाज की तरफ झुक गए। एक ही बचा समाज की कोई परवाह नहीं की। फिर दूसरी बात, जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है उसमें भी ऐसे ही होता है, पूरे ब्राह्मण परिवार की कोई चिंता नहीं करता, एक नहीं चिंता करता और बाकी सब ब्राह्मण परिवार से संक्षेत्र में अटैच होकर रहे थे या नहीं रहे थे? है? अटैच होकर रहे ना, तो एक ही बीज है अव्वल नंबर, जिसके लिए गायन है दूसरे धर्मों में, क्या? अल्लाह अव्वल दीन। हर धर्म में एक ही आत्मा होती है जो अपने धर्म की अव्वल आत्मा होती है, उसको कहते हैं उस धर्म का पिता, उस धर्म का प्रजापिता कहो। तो ऐसे ही संक्षेत्र में एक आत्मा प्रत्यक्ष होती है, डिटैच होती है और लंबे समय तक 5 साल तक भी डिटैच होकर के रहती, कोई भी उसका सहयोगी नहीं बनता और वो आत्मा प्रवाह नहीं करती कि कोई सहयोगी बने या न बने। पहला सहयोगी कौन बनता है? है, है? जगत पिता है, सारे जगत का, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो मनुष्य सृष्टि का बाप का पहला जो सहयोगी बनेगा वो सृष्टि निर्माण के कार्य में माता ही बनेगी ना। तो जगत पिता के साथ जगदम्बा निकलती है जो 83 84 की अव्यक्त वाणी में बोला, क्या बोला? 83 में 13 होना चाहिए ना,
माना
83 तक ब्रह्मा कुमारियों में से कोई भी 13 नहीं हुआ है? तो उसको पहचाना ही नहीं तो 13 कहाँ से होगा? पहली बात क्या है? पहली बात पहचानने की है, बाप को पहचानना, कौन है मनुष्य शक्ति का बाप, पहचानेगा तभी तो उसका बनेगा। तो पहचाना किसी ने, जिसने पहचाना वो सरेंडर हो गया। काई काई से सरेंडर हो गया है, तन से सरेंडर हो गया, और मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ये नहीं नाक अर्पण कर दी तो कान छोड़ देंगे, आंख अर्पण कर दी तो मुंह छोड़ देंगे, हाथ अर्पण कर दिया तो पांव छोड़ देंगे, नहीं। मुरली का महावाक्य क्या कहता है? तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। तो ऐसी समर्पण होने वाली कोई आत्मा के लिए बोला, सन 83 है, 83 तो 13 होना चाहिए ना। तो सवाल पैदा होता है, अरे इतनी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हो गई, कोई 13 नहीं बनी। अरे उस 13 को पहचानेगी तब बनेगी कि बिना पहचाने ही बन जाएंगी? तो उस 13 को पहचानने वालियों में जो निकलती है वो ही सच की माता जगदम्बा कही जाती है, जिस जगदम्बा से सारा ही जगत उत्पन्न होता है। क्या? सारा जगत। सारा जगत माने हर धर्म के वंश वाले कहां से जन्म लेते हैं? है, चलो रुद्र माला है पहली पहली माला, चंद्रवंशियों की माला से भी पहले, विजय माला से भी पहले कौन सी माला बनती है? है, रुद्र माला। तो रुद्र माला है, उस रुद्र माला में भी ऊपर के दो मणके होते हैं, होते हैं या नहीं है? वो दो मणके जो हैं वो मुख्य हैं, जो उस फूल के निकट हैं, दाई ओर का मणका और बाई ओर का मणका, एक फर्स्ट और एक लास्ट। क्या प्राप्ति करने वाले बच्चों में भांतियों में फर्स्ट मणका बाप और लास्ट मणका माता? आज भी परिवार में, भारतीय परिवारों में ये परंपरा चली आ रही है, क्या कि माता का, माता अपना कोई हक नहीं लेती। क्या माता सब कुछ अपना किसको अर्पण कर देती है? है, बच्चों को अर्पण कर देती। अभी बाप आए हैं, इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में भी ऐसे ही नियम था, माता का कोई हक नहीं था, चल अचल संपत्ति में किसका हक होता था? है, बच्चों का हक होता था सारा, माता सब कुछ अर्पण कर दी थी। ऐसी त्याग की मूर्ति भारत की माताएं थी। अभी तो विदेशियों का प्रभाव पड़ गया, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो विदेशियों से प्रभावित है उसने ये नियम बना दिया, क्या माताओं को भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं तो माता जितनी त्यागी तपस्वी होती थी, बच्चों के लिए परिवार के लिए, इतना संसार में भारतीय माताओं के मुकाबले कोई भी त्यागी तपस्वी नहीं हो सकता था।
तो देखो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? हाँ, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया से ये परंपरा शुरू होती है। जो जगदम्बा है वो बच्चों को सब कुछ अर्पण कर देती है, ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते हैं। रुद्रवत्स कहे जाते हैं, रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। वो रुद्रमाला के मणकों में एक एक रुद्राक्ष में ढेर सारे मुख बने हुए होते हैं। कोई में एक मुख भी होता था, होता है। वो एक मुख वाला मणका बड़ा विरल मिलता है, यूं कहें मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई में दो, कोई में चार, कोई में 14, ऐसे ऐसे मुख बने होते हैं। किसकी यादगार? मुख लेने की यादगार है क्या? उनका मुख कौन लेता है? जैसे अव्वल नंबर जो मणका है रुद्रमाला का, वो एक मुख वाला है या अनेक मुख वाला है? एक मुख वाला। एक बात, कहते भी है ट्रुथ इज गॉड। क्या? जो सत्य है वो एक होता है या अनेक होता है? एक होता है। तो ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज ट्रुथ। भगवान क्या है? सत्य है। इस सृष्टि पर सदा काल सत्य है। और बाबा ने भी मुरली में कहा, क्या कहा? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि काल से लेकर के नर से नारायण बनने का समय से लेकर के 84वें जन्म तक इस सृष्टि पर अंत तक कायम रहता है, और जब नई सृष्टि शुरू होती है तो भी कायम रहता है। इसलिए झाड़ के चित्र के ऊपर वो एक ही शख्सियत बैठी हुई दिखाई है नग्न रूप में। कौन? शंकर को दिखाया है। जो बीज सृष्टि रूपी वृक्ष था, नीचे पहले पहले बोया गया वो ही बीज कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, वो कैसा बीज है, कैसा दाना है? कैसा दाना है? है धरणी में अपने को खाक बना देता है। सारी शक्ति एड़ी से लेके चोटी तक की सारी शक्ति नए वृक्ष को तैयार करने में पूरी शक्ति लगा देता। खाक हो जाने के बाद कुछ बचता है? है? कुछ नहीं बचता। खाक हो गया माने खलास हो गया। तो देखो वो बीज है जो धरणी रूपी कन्याओं माताओं में अपनी सारी शक्ति तिरोहित कर देता है। क्या? अपने पास कुछ भी नहीं रखता। ये राज समझने का है, राजयोग का। क्या? जो राजयोग सिखाने वाला है कौन है? प्रैक्टिकल में है या सिर्फ थ्योरी ही सिखाता है? हाँ, शिव क्या है? थ्योरी मास्टर है या प्रैक्टिकल है? है? वो खुद कहता है, बच्चे मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन तुम बच्चे क्या हो? मास्टर त्रिकालदर्शी हो। हाँ? मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हो, तुम मास्टर त्रिकालदर्शी हो, तुम्हारी मास्टरी है। कैसी मास्टरी? किसको कहा जाता है मास्टर? जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। आज भी दुनिया में परीक्षाएं होती हैं, तो जो प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, छोरी में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाए, और थ्योरी में टोटली पास हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गया तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। तो बताया, तुम प्रैक्टिकल राजयोगी हो नंबर वार, तो जो प्रैक्टिकल राजयोगी है क्या राज भरा हुआ है? क्या राज भरा हुआ है? हैं? अरे बाप, शिव बाप इस सृष्टि पर किस लिए आते हैं? राजयोग से राजाई की स्थापना तो करने आते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है तीन मूर्तियों के द्वारा संपन्न होता है। क्या? स्थापना, पालना और विनाश। उन तीनों मूर्तियों में सबसे सशक्त और सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। तो जो सबसे सशक्त मूर्ति है, जो परमधाम के बिल्कुल नजदीक है, उसमें पहले आता है, बीच की मूर्ति में आता है या नीचे की मूर्ति में आता है? पहले किस में आता है? है? ऊंचे से जो ऊंची मूर्ति है उसी में आवेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही मूर्ति है इस सृष्टि रूपी वृक्ष में, जो निराकारी स्टेज के बिल्कुल निराकारी धाम के नजदीक है। तीसरी मूर्ति साकार दुनिया के नजदीक है या निराकारी दुनिया के नजदीक है? साकारी दुनिया के नजदीक है। वो साकार है और वो निराकार है। और बाप कहते हैं बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो। कैसी? एक सेकंड में साकारी, साकार कर्म इंद्रियों से कर्म करने का अनुभव करने वाली, एक सेकंड में। और एक सेकंड में क्या बन जाओ? हैं? निराकारी बन जाओ। प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों का निराकार ज्योति बिंदु की याद में कोई रस लेने का अनुभव न हो, कुछ भी प्राप्ति का अनुभव न हो, ऐसी निराकारी स्टेज लेने वाले जो सच रूपी वृक्ष के झाड़ के ऊपर दिखाई गई है, नंगी है, कपड़े पहने हुए है, नंगी है। नंगी का मतलब क्या हुआ? निराकारी आत्मिक स्टेज में है, और वो ही ऊंचे से ऊंचा भगवंत है इस सृष्टि में। क्या? ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। इस सारी सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पाटधारी है, कैसा है? जिसकी पूजा आज सारे भारतवर्ष में बहुत पुरानी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे विश्व की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली है। क्या मूर्तियां? मूर्ति माने बड़ा रूप, मूर्त रूप, और अमूर्त माने जिसकी मूर्ति ना हो, तो वो क्या है? मूर्ति भी है, माने साकार है, लेकिन साकार होते हुए भी उसका जो यादगार सात्विक रूप दिखाया गया वो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। क्या था? है?
हीरा दिखाया गया था, उसमें जो हीरा दिखाया गया वो हीरा किसकी यादगार, और जो लिंग दिखाया गया था पत्थर का वो किसकी यादगार, बड़ा रूप किसकी यादगार और वो छोटा रूप किसकी यादगार है? निराकार बाप की यादगार और बड़ा रूप साकार की यादगार, माने जो बड़ा रूप है वो मूर्तिमान शंकर की मूर्ति की यादगार है, जिसको हाथ पांव ना टांकन दिखाए जाते हैं, और जो हीरा है वो शिव बाप की यादगार। लेकिन शिव बाप हीरा अर्थात तो पत्थर बनता है, बनता है, बनता है, वो हीरा तो पत्थर होता है ना। अरे नौ प्रकार के जो रतन होते हैं वो पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? तो नौ प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो पत्थर बुद्धि बनते होंगे। शिव बाप न पत्थर बनता है और न पारस बनता है। पारस माने पारसनाथ नाम पड़ता है स्पर्श का बिगड़ा हुआ रूप, पारस बन गया। स्पर्श माने छुआ और संग का रंग लगा, चाहे आंखों से छुओ चाहे कानों से छुओ, कानों से भी सुनी हुई बात याद आती है कि नहीं है? माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चा जो बोलता है वो माँ के कान में पड़ता है तभी तो याद आता है। तो स्पर्शनाथ का मतलब ये है, ऐसा स्पर्श से जादू करने वाला जिसके कोई भी शरीर के अंग को स्पर्श किया तो संग का रंग जरूर लगेगा। जिसने स्पर्श किया उसके संग का रंग नहीं लगेगा उसको। क्या जिन्होंने स्पर्श किया उनका संग का रंग उसको नहीं लगेगा, लेकिन उसको जो स्पर्श करेगा उसके संग का रंग जरूर लगेगा। ऐसा पारसनाथ यादगार है, जैनियों में यादगार है पारसनाथ। तीर्थंकर 24 जो माने जाते हैं उनमें एक तीर्थंकर का नाम है पारसनाथ, स्पर्शनाथ।
है
यहाँ माने
हीरा कौन
है? हीरा
पत्थर में जड़ा हुआ हीरा,
साकार में हीरा। हीरो पाटीदारी कौन है? चारों युगों में चारों सीन में ऊंचे से ऊंचा पाटधारी कौन है? कौन है? है? जो है
शरीर और आत्मा।
हाँ, तो जो हीरा है वो है उसकी आत्मा। किसकी? शंकर की आत्मा। वो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई है। वो शिव नहीं है, वो पत्थर बुद्धि बनने वाला वो हीरा नहीं है, क्योंकि वो तो न पत्थर बनता है न पारस बनता है। उसके संग का रंग दुनिया को लगता है तब पतित से पावन बनती है। उसके संग का रंग लगता है दुनिया को नहीं, उसको तो दुनिया दूसरे धर्म के लोग पहचानते भी नहीं है। कहते हैं निराकार निराकार निराकार, क्या है प्रैक्टिकल सो जानते ही नहीं। तो संग का रंग जिसका लगता है वो शरीरधारी ही होगा या बिना शरीर के होगा? है, वो हीरा शरीर से अटैच है, और सृष्टि के आदि में भी अटैच था, सृष्टि के अंत में भी अटैच रहता है। वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है। शास्त्रों में दिखाया गया लिंग का आदि और अंत पहचानो, तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा। तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना, है माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना, है निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विश्वजामे, मैं सृष्टि के आदि में छोड़ता हूँ और जब महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या उसे एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते। क्यों भाई उसमें क्यों समा जाते? आत्मलोक में आत्माएं समा जानी चाहिए। वो देहधारी जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है उसमें क्यों समा जाती है? क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने इस सृष्टि पर कोई परमधाम का अव्वलंबर सैंपल भी है जिसके लिए बोला। क्या बोला? घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, मुझे याद करो। भाई तीन तीन को याद क्यों करें? है गीता में तो लिखा है मां एकम याद करो, मुझे एक को याद करें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? तो ये दो दो बातें कैसे? क्योंकि क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में जब शिव बाप आते हैं नई सृष्टि रचने के लिए, रचने और रचाने के लिए करण करावनहार है ना, तो जब नई सृष्टि कराने के लिए आता है तो वो बोलता है क्या कि परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो उतारने वाले बच्चे नंबरवार होंगे या सब एक साथ उतारेंगे? तो जो अव्वल नंबर बच्चा है जो परमधाम को इस सृष्टि पर उतारता है, परमधाम को इस सृष्टि पर उतारने का मतलब स्वयं आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है। कैसी स्टेज? जो शिवलिंग यादगार दिखाई गई है मंदिरों में, बाप कहते हैं। कौन कहता है? आत्माओं का बाप कहते हैं। न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो जो मंदिरों में शिवलिंग रखा हुआ है जिसकी पूजा होती है और हम जाके उसकी पूजा करते रहे, तो किस आत्मा की पूजा करते रहे? उसकी जो कहता है न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, या कोई और है जो इस सृष्टि पर पहले नंबर में पूज्य बनता है और पहले नंबर में पुजारी बनता है? कौन है वो? अरे कोई है कि नहीं है? है बोला 10 वर्ष में क्या लक्ष्मी नारायण का जन्म माने प्रत्यक्षता होगी। तो 76 में जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ वो राम वाली आत्मा इस सृष्टि का बीज साबित हो जाती। जो नर से नारायण बनता है और वो नर से नारायण तब ही बनता है जब अपन को निराकारी बीज रूप स्टेज में
स्थिर कर लेता है। तो पहले पहले निराकारी बीज रूप में कौन स्थिर होता होगा है? राम बलिया, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में पिछले साल बोला कि 5 दिसंबर है, 18 जनवरी नहीं स्मृति दिवस है, असली स्मृति दिवस है 5 दिसंबर, जब बाप और बच्चे का मिलन होता है पहली बार। नहीं समझ में आया? वो अव्यक्त वाणी सुनी नहीं किसी ने? आई नहीं इधर?
सुना
था। हाँ तो बताओ वो 5 दिसंबर क्यों बोला? 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है असली, क्योंकि 18 जनवरी जो है वो साकारी स्टेज में रहने वाला जो ब्रह्मा है, जो साकारी शारीरिक स्टेज छोड़ता ही नहीं, स्थूल छोड़ता है तो सूक्ष्म ग्रहण कर लेता है और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उस आत्मा के मिलन की बात है 5 दिसंबर को, जो आत्मा पहले पहले बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है और शिव बाप के साथ मिलन मनाती है। जो बीज रूप आत्मा के लिए सन 76 के लिए इशारा किया कि सन 76 में नरसे नारायण बनने वाली आत्मा का जन्म होगा, प्रत्यक्षता होगी। माना आत्मा जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनका उन आत्माओं के बाप से मिलन वो फर्स्ट मिलन है, या आत्मा का देह से मिलन फर्स्ट है? आत्मा से आत्मा का मिलन फर्स्ट, या आत्मा से देह का देहधारी से मिलना फर्स्ट, किसको प्रायोरिटी देंगे? आत्मा से आत्मा को मिलने का प्रायोरिटी है। तो वो शिव जो सदा आत्मा है, सदा शिव है, कभी देह बनता ही नहीं, वो शिव इस सृष्टि पर जब आता है, उस आत्मा पर पहले पहले फिदा होता है, जिस आत्मा पर तुम सब बच्चे आशिक बनते हो। क्या? जो आत्मा सभी आत्माओं का बाप है, वही जिस आत्मा पर आशिक होगा तो सभी आत्माओं को किसके ऊपर आशिक होना पड़े? है? अरे जिसके ऊपर वो ऊंचे थे ऊंची आत्मा आशिक हो गई, तो उसके ऊपर सबको आशिक होना पड़े या नहीं होना पड़े? उसका नाम क्या बताया मुरली ने? एक शिव बाबा है माशूक और बाकी सब हैं आशिक। माने तुम बच्चे आशिक हो एक शिव बाबा के। मैं भी क्या बोलता है, मैं भी आशिक हूं एक शिव बाबा के। तो 3 आत्माएं संसार में हो गई, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, एक वो जो अक्षर है, कभी क्षरित नहीं होती, कभी पतित नहीं होती शिव, दूसरी वो आत्माएं हैं जो क्षर हैं, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब क्षरित होती हैं, और तीसरी एक और है जो गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरत है, उसको परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम माने आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, परम पार्टधारी आत्मा,
शिव तो चार युगों में पार्ट बजाता ही नहीं, वो तो हीरो पार्टधारी है ही नहीं, तो उसको तो परमात्मा नहीं कह सकते। और कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा या परमात्मा परमपिता, किसका नाम पहले? आत्माओं के बाप का नाम पहले और उसके बाद किसका नाम?
मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम।
हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम परमात्मा, जो दुनिया में आज भी लोग कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु गलती से समझ लिया है कि हर आत्मा परमात्मा, ऐसी बात नहीं। एक ही आत्मा है जो परम पार्टधारी है इस सचिरूपी रंगमंच पर, भले चारों सीन में चारों युगों में कोई इसको पहचान नहीं पाता, जब तक शिव बाप आकर के पहचान न दे तो पहचाना जाता है। उससे पहले उस हीरो पार्टधारी को कोई भी नहीं पहचान सकता, और वो हीरो पार्टधारी पहले अपने पार्ट को पहचानेगा कि दूसरी आत्माएं उसको पहचानेंगी? पहले हर आत्मा अपने 84 जन्म के पार्ट को पहचानेगी, फिर दूसरे पहचानेंगे, या तो बाप जाने। तो बाप आत्माओं का बाप सर्वोपरि, और उसके बाद कौन? परमात्मा। वो परमात्मा जो है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हीरो पार्टधारी है। वो हीरो पार्टधारी शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजा जा रहा है, गलती से दूसरे धर्म पिताओं ने उनके फॉलोअर्स ने निराकार को समझ लिया, और इस्लामियों ने तो वो गोल पत्थर ले जा करके काबा में लगा भी दिया, संगये या सबद जिसका नाम रखा। यहूदियों ने भी मान लिया कि वो लाल लाइट का गोला है जिसे अंग्रेज लोग हेवनली गॉडफादर कहते हैं। अरे हेवनली गॉडफादर होगा तो हेवन को रचने वाला होगा या नहीं? हेवनली गॉडफादर क्यों, कैसे कहा जाएगा हेवनली गॉडफादर? हेवन की रचना करे तो हेवनली गॉडफादर, या हेवन की प्रैक्टिकल में रचना न करे तो भी हेवनली गॉडफादर?
प्रैक्टिकल में रचना करे तो,
प्रैक्टिकल में रचना करे तो हेवनली गॉडफादर। तो देखो उसी को गीता में कहा गया परमात्मा इति उदाहरण, वो परमात्मा है। आत्माओं में परम पार्टधारी है, उसकी तुलना और आत्माओं से की जा सकती है जो पार्टधारी आत्मा है, वो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाता। बजाता है? नहीं बजाता। अकरता है या करता है? वो तो अकरता है। और कर्ता कब बनता है? जिसमें प्रवेश करता है और उसको लक्ष्य देता है कि तुम्हें मैं आप समान बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? आप समान। आप समान माने मैं ज्योति बिंदु हूँ, निराकारी हूँ, तो तुमको भी निराकारी बनाऊंगा नंबरवार। तो 100% जो नंबरवार में से अब्बल नंबर है वो निराकारी जब बनता है तो उसकी यादगार शिवलिंग बनाई गई है जो सार्वभौम है सारी दुनिया में, खास भारतवर्ष में बहुत मान्यता प्राप्त है। वो शिवलिंग जो पुराने मंदिरों में बीच में रखा है और चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी है, इसे क्या साबित होता है? क्या साबित हुआ है कि वो परम पाठधारी है, वो परम सदगुरु है। जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। सदगुरु दलाल है तो साकार है या निराकार है?
साकार,
साकार। और वो सुप्रीम टीचर भी है, टीचर भी सुप्रीम है तो मुख से टीच करेगा, व्याख्या करेगा, तब ही टीचर बनेगा। या बिना व्याख्या करे टीचर बन जाएगा ऊंचे से ऊंचा? जो ऊंचे टीचर्स होते हैं वो प्राइमरी स्कूल में जो तुलसीदास के, सूरदास के, कबीरदास के दोहे कवित्त पढ़ाए जाते हैं उनको टीच करते हैं ऊपर के प्रोफेसर्स। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जो हैं उनको गुह्यार्थ नहीं बताते। तो ऐसे ही है कि शिव बाप वो ही एक टीचर है, एक ही पर्सनालिटी के रूप में है, टीचर भी है, बीज बोने वाला बाप भी है आदि में, और सदगति देने वाला सदगुरु भी है। पहले सदगति मन बुद्धि की संकल्पों के आधार पर करेगा या शरीर की करेगा? तो पहले पहले मन बुद्धि की सदगति करता है टीचर के रूप में, पढ़ाई पढ़ा करके, व्याख्या दे करके, कि सत्य संकल्प चलें, दुष्ट संकल्प न चलें। टीचर का काम क्या? जो भी कविता है, जो भी प्रोज पोएट्री है उसकी व्याख्या करना। व्याख्या करने वाले को नाम दे दिया है कपिल मुनि। क्या नाम दिया? कपिल मुनि। उसका यादगार बना हुआ कंपिल में, जिसकी बसाई हुई नगरी का नाम कंपिल्य नगर पड़ा। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो कपिल मुनि थे वो ऐसा मनन चिंतन मंथन करने वाले थे अव्वल नंबर, जिन्होंने सांख्य शास्त्र रचा। क्या रचा? सांख्य सह आख्या, आख्या माने व्याख्या। व्याख्या के साथ हर बात हर शब्द बताते थे, व्याख्या के साथ सारे शास्त्रों का जिन्होंने रचना की। देखो आदि से देख लो, द्वापर के आदि से वेदों की रचना किसने की? वेद व्यास कहा जाता है। लेकिन वेदों से भी पहले कोई था ग्रंथ और जिसकी रचना की गई, वो कौन सा ग्रंथ था? श्रीमद् भगवत गीता। यज्ञ के आदि में भी जब रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ तो गीता के अर्थ ही बैठ करके सुनाते थे। जो आदि में सो अंत में हो। दुनिया नहीं मानने वाली है, दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य नहीं मानने वाले हैं, उन्होंने गांठ बांध के रख ली, ब्रह्मा भी उतरा है तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। शास्त्रों में मुख्य शास्त्र गीता है। गीता की टीकाएं दुनिया में सबसे जास्ती हुई है। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी इतनी टीकाएं नहीं हुई, व्याख्याएं नहीं हुई, जितनी ज्यादा टीकाएं गीता की हुई। तो गीता में जरूर कोई रहस्य है ना? मनुष्यों ने जो गीताएं लिखी हैं, मनुष्य विकारी, तो उनकी व्याख्याएं रूपी टीकाएं भी विकारी होगी। ये गायन है, कह समझे कवि, कह समझे रवि, क्या या तो ज्ञान सूर्य स्वयं इस सृष्टि पर आ जाए तो इस गीता रूपी जो सृष्टि की पहली रचना ग्रंथ है उसकी सही व्याख्या कर सकता है, या तो वो कवि ही आत्मा इस सृष्टि पर आ जाए तो उसका सही अर्थ निकलेगा, बाकी कोई भी टीकाकार कोई भी देहदारी गुरु गीता की सही व्याख्या नहीं कर सकता। और है भी ऐसे, कोई भी गीता उठा के देख लो कंट्राडक्शन मिलेगा, एक की व्याख्या दूसरे की व्याख्या को काट रही है। जैसे माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं और परमपिता अलग एक है, और शंकराचार्य की गीता क्या कहती है, क्या कहती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है दूसरा कुछ है नहीं। बताओ कितना भारी अंतर विरोध मूल रूप में ही, तो सच्चाई कैसे मिलेगी, सत्य कैसे मिलेगा। इसलिए मुरली ने बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, क्या जो ऊंचे से ऊंचा बाप है जिसका कोई बाप नहीं उस बाप का परिचय कौन दे सकता है, वो बाप स्वयं इस सृष्टि पर आए तभी सही परिचय मिलेगा, नहीं तो किसी को परिचय मिल ही नहीं सकता। और वो ही होता है, वो गीता आदि में भी व्याख्या सुनाई जाती थी, जिस गीता की व्याख्या को जो आदि में पीयू के द्वारा सुनाई जाती थी विधर्मी ब्राह्मणों ने, कमकुरी वाले ब्राह्मणों ने उस गीता को जमीन में जमीन दोज कर दिया, शूटिंग हो गई। मुसलमानों ने क्या किया, भारत में आकर के भारत के शास्त्रों को जमीन में गाड़ दिया, भाड़ में भून दिया, फाड़ फाड़ के नदी में बहा दिया। तो सच्चाई को नष्ट करने वाले भी इसी दुनिया में हैं, और सच्चाई को पोषण करने वाले भी तुम बच्चे हो जिनके सहयोग से सत्ययुग की स्थापना होती है। बताया उस बाप को याद करो, त्रिमूर्ति के चित्र में ये क्लैरिफिकेशन कई दिन से बाबा दे रहे हैं, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, 32 किरणों वाला शिवलिंग का चित्र ले जाती हैं, पहले वो रख देती हैं प्रदर्शनी में, क्या परिचय देती है, ये हमारा तुम्हारा सबका बाप है, क्या ये जो शिवलिंग है ये हमारा तुम्हारा सबका बाप है, इसके 32 गुण हैं, अरे जो निर्गुण है जो निराकार है निर्गुण निराकार गाया हुआ है वो गुण अवगुण वाला है, उसमें गुण और अवगुण हो सकते हैं क्या, नहीं, वो तो निर्गुण है और उसके बच्चे भी निर्गुण बालकों की संस्था है, वो निर्गुण बालक है आज भी अंदर से बोल रहे हैं आप इतर सुपरवाई हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्या क्या जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाए, मनुष्य से देवता बन जाए। तो बाबा मिसाल देते हैं मुरली में, भक्ति मार्ग में एक निर्गुण बालकों की संस्था भी थी, वो नाम कैसे पड़ा है, ये जो निर्मल बालकों की संस्था द्वापर कलयुग में होती है यह सत्युग त्रेता में द्वापर कलयुग में होती है, और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है संगम में। हम ऊपर ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उल्टी सीढ़ी। क्या कैसी सीढ़ी चढ़ रहे? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे। उल्टी सीढ़ी में बताया जब तुम बच्चे त्रेता युगी सीढ़ी में प्रवेश करेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो किसी का डिस्चार्ज होना बंद हुआ है? कोई नहीं कहेगा, छाती ठोक के कोई नहीं कहेगा कि हमारा डिस्चार्ज होना बंद हो गया। इसका मतलब हम अभी द्वैतवादी द्वापर युग की सीढ़ी में ही चल रहे हैं या त्रेता में प्रवेश कर गए है?
द्वापर में है।
द्वापर में ही है। अंदर से आवाज आ रही है, हाँ पे ही कर सपरोई। हमारे में ताकत नहीं है। तो जो आप ही तरस पर हुई, आप ही हमारे पर तरस करो, कौन करे है? कौन तरस करे, कौन कृपा करे, किससे कहते हैं? हाँ, वो निराकार, वो पार्श्वनाथ नहीं बनता है, स्पर्शनाथ नहीं बनता है। उसके स्पर्श करने से कोई भी धर्म पिताएं जो निराकार को मानने वाले हैं वो देवता नहीं बनते हैं। तुम बच्चे देवता बनते हो, नर से नारायण जैसे बनते हो। कब बनते हो, कब बनते हो हैं? अरे संग तो तब करेंगे जब पहचानेंगे हैं? छत्तर से पहचाना क्या है? 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 में बोला, 83 में 13 होना चाहिए। इसका मतलब 83 तक भी कोई 13 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई ने पहचाना ही नहीं। 83 में जो 13 हुआ वो जगत पिता की जगत जननी प्रसिद्ध हो जाती है। कोई भी परिवार बनता है, परिवार का निर्माण होता है पिता के द्वारा, तो पहला पहला कौन सा भांति सहयोग बनता है? माता बनती। तो वो जगत पिता सारे मनुष्य सृष्टि का पिता 76 से प्रत्यक्षता वर्ष में प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन कोई उसको पहचानता नहीं। जो पहचान करके अर्पण में हो जाए, तन से, मन से, धन से, संकल्प से, समय से, संबंधों से, संपर्कियों से अर्पण हो जाए। तो बताया 83 सन आया है तो 13 होना चाहिए, चाहिए तो हुआ या नहीं हुआ? अगर कहें नहीं हुआ तो ये इतने सर कहां से बैठे हुए? जवाब दो, इतने सब एडवांस पार्टी में क्यों बैठे हुए हैं? कहां से बैठ गए? कैसे प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया कि हम रुद्रमाला के मण के? पहचानते हुए ना। तो वो ही बताया कि पहले पहले माँ पहचानती है, और पहचान करके फिर नहीं, पार्श्वनाथ का स्पर्शनाथ का स्पर्श करती है। किस लिए? अरे संग के रंग से पावन बनने के लिए। इसलिए उस समय से ये गायन भक्ति मार्ग में चलता है पति के लिए। क्या? पति माने जो रक्षा करता है, उसके लिए ये गायन चलता है। क्या? तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो। तो बाद में सभी मनुष्य मात्र ने मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य अपार्थ सर्वस्व, सभी मनुष्य ये समझ के बैठ गए क्या ये पत्नी है, हम इसके पति परमेश्वर है। अब बताओ परम ईश्वर एक होगा या जन्म जन्मांतर एक होगा या अनेक होंगे?
एक
है?
एक।
जो एक है पति परमेश्वर उस एक का गायन है, सबका गायन नहीं है। और वो पति परमेश्वर प्रैक्टिकल में इस मनुष्य सृष्टि में जो राजघराने में आने वाली आत्माएं बनती हैं, कोई न कोई जन्म में राजा रानी बनती हैं, उन आत्माओं को राजयोग सिखाता है। क्या सिखाता है? राजयोग। नाराजयोग तो नहीं सिखाता है। शीतला माता क्या सिखाता है? राजयोग सिखाता है कि नाराजयोग सिखाता है? राजयोग सिखाता है। कैसा राजयोग? ऐसा राज सिखाता है कि बताता है संग के रंग से सारी दुनिया बिगड़ती भी है और सुधरती भी, लेकिन किसके संग के रंग से? एक ऊंचे ते ऊंचे को पहचान कर उसके संग के रंग से दुनिया सुधरती है और उसके भूलने के बाद अनेकों से संबंध जोड़ने से, अनेकों के साथ इंद्रियों का स्पर्श करने से दुनिया बिगड़ती है व्यभिचारी बनने से। वो आठ नारायण सतयुग के वो भी द्वापर युग में आकर के क्या हाल हो जाता है? दूसरे दूसरे जो धर्म पिताएं उतरते हैं उनके माता बन जाती हैं, संबंध जोड़कर बाप को भूल जाती है, जबकि वो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप द्वापर युग में भी इसी सृष्टि पर हीरो पार्टधारी बनकर रहता है। होता है या नहीं होता है? होता है, फिर भी न पहचानने के कारण क्या करते हैं? जो आया, भारतवासियों की ये आदत है क्या, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। जो धर्म पिताएं पावरफुल आए उन्होंने जो सुनाया बस सुन करके प्रभावित। आज भी माताओं की आदत पड़ी हुई है क्या, बाप का पूरा ज्ञान ले लेंगी, सात्विक स्टेज में जान लेंगी ये मेरा बाप है, क्या ऊंचे से ऊंचा बाप है। फिर क्या होता है? दूसरों के संसर्ग संपर्क में आने लगते हैं। बाप ने कहा एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन माताएं क्या करती हैं खास है? जिसने जो कान में डाल दिया, हाँ यही बात है, हमने भी ऐसे ही अनुभव किया, सच्ची बात है, बस दूसरा गुरु बना लिया। फिर तीसरे आया, तीसरे ने तीसरी बात सुनाई, चौथे ने चौथी बात सुनाई। जो ऊंचे थे ऊंचे की बात हम सुनते हैं, उन बातों पे ध्यान नहीं देते। तो संग का रंग अनेकों का लगेगा, एक का लगेगा? संग का रंग अनेकों का लगता है। इनको कहते हैं भारतवासी। कहां के वासी? भाव माने ज्ञान की रोशनी में जो रत माने लगा रहता है, व्यास राम वाली आत्मा काय में लगी रहती है, ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है, चाहे कर्मणा से, चाहे वाचा से, चाहे संकल्पों से, चाहे वाइब्रेशन से, ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है उस आत्मा जिसका नाम भारत है, चैतन्य। जड़ जमीन का नाम नहीं है, जड़ जमीन ज्ञान की रोशनी में रत नहीं रहती, कोई आत्मा है जिसके नाम पर क्या भारतवासी बने हैं। कहां के वासी? भारत के रहने वाले वासी, माने जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही तने के वासी, ना इधर कन्वर्ट होते ना इधर की डाली में कन्वर्ट होते। क्या अगर इधर की डाली में कन्वर्ट हो गए तो विदेशी धर्म में चले गए, इधर की डाली में कन्वर्ट हो गए तो बुद्ध शंकराचार्य सिख आदि बन जावेंगे। कहाँ के वासी? नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तना जाता है, उसके वासी हैं मन बुद्धि से। मन बुद्धि किस में धरी रहती है? वो ही मेरा परम धाम है, मेरा बाप है, बाप से ही सारे बच्चे निकलते हैं माता के द्वारा। कोई पूछता किससे जन्म हुआ तो क्या बताते? माता से जन्म। अरे माता से जन्म हुआ, माता में भी बाद में आया या पहले? पहले ही आ गया था। माता की बात बाद में, माता से भी पहले जो भ्रूण तैयार होता है उस भ्रूण का जो बीज रूप है, क्या जिसे शुक्राणु कहते हैं, वो पहले धरणी में डाला जाता है। धरणी रूपी माता कही जाती है, तब प्रत्यक्षता रूपी बाद में जन्म लेता है। तो पहले पहले उस माता से तुम बच्चों का जन्म हुआ। क्या कहा? चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धिवंशी बाद में पैदा होते हैं। पहले पहले कौन पैदा होते हैं? प्रैक्टिकल में पैदा हुए उस जगदम्बा रूपी धरणी से या नहीं हुए? हुए। तो वो हमारा बाप है, वो हमारी माता है। कौन कौन? माता कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा के भी दो रूप हैं, एक है शरीर, पांच तत्वों का संघार, पांच तत्वों का बढ़िया से बढ़िया नमूना चित्रों में, देवियों के बीच में कोई देवी बहुत सुंदर दिखाई जाती है, है? कोई दिखाते हैं? कौन? दुर्गा। दुर्गा को दिखाते हैं ना, दुर्गा ही तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है। और पूर्वी जन्म तो बहुत प्रसिद्ध है, तो वो जो जगदम्बा है सारे जगत में जितने भी धर्म हैं और धर्म के फॉलोअर्स हैं सबका मूल जन्म देने वाली वो है। तुम बच्चों का अव्वल नंबर है, बीच का नंबर है या फड्डी नंबर है? अव्वल नंबर है। तो बड़े बच्चे हुए या छोटे बच्चे हुए तो सुख और शांति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो बेहद का बेहद के बाप का वर्षा है वो तुमको पहले मिलेगा बड़े बच्चों को या दुनिया के दूसरे धर्म वालों को मिलेगा? है? किसको मिलेगा? जीवन मुक्ति माने जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्त, सुख का वर्षा और मुक्ति का वर्षा, देह से, देह के विकारों से मुक्ति, देह से आत्मा अलग हो गई, डिटैच हो गई, उसे कहेंगे मुक्ति। परम धाम वासी हो गई इस सृष्टि पर। परम धाम पहला नंबर, अव्वल नंबर का कौन? अरे है
साकार बाप का शरीर।
हाँ, साकार बाप का जो शरीर है, मनुष्य सृष्टि के बाप का जो रथ है, वो ही हमारा परम धाम है। उस परम धाम में से ही हम सब मनुष्य आत्माएं नंबरवार इस सृष्टि पर आती हैं और सब महामृत्यु के समय उसी में समा जाते हैं।
गीता के श्लोक देख लो उठा के। बाप भी यही बात बताते, उस बाप को पहचानो जिससे तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मैं जीवन में आता हूँ क्या 84 के चक्र में? वो क्या बोलता है, मैं जीवन मुक्ति लेता हूँ? नहीं आता। तो जो धनवान बाप होगा धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, अरबपति होगा तो अरब का वर्षा देगा। जिसके पास जीवन मुक्ति है ही नहीं, वो जीवन में रहते जीवन मुक्ति का वर्षा देगा है? नहीं देगा। तो वो कौन है उसको पहचानो, उसकी पहचान वो आकर के देता है। कौन? वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, भगवंत नहीं कहे, ऊंचे ते ऊंचा बाप। क्या वो आकर के परिचय देता है? क्या कि राजयोग सीखो, जिस योग में राज भरा हुआ है उससे योग लगाएंगे, लगन लगाएंगे, मन बुद्धि का लगाव लगाएंगे, इंद्रियों का लगाव लगाएंगे, तन का लगाव लगाएंगे, धन का लगाव लगाएंगे, तन के संबंधियों का भी उससे लगाव लगाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? सब कुछ अर्पण करेंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? 21 जन्म का मिलेगा। तो उसका परिचय देता है किसके द्वारा है? हाँ, ऐसे नहीं दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा हमें परिचय मिल गया। 76 से 73 तक मनुष्य सृष्टि के बाप का किसी को परिचय मिल गया? मिल गया तो उसका बन गया है? नहीं बना। तो बताया कि मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। क्या कहा, क्या कहा? बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। आत्माओं के बाप का परिचय, मनुष्य सृष्टि की जो आत्मा है पहली, उसको परिचय दिया उसने। किसने पाया परिचय? मनुष्य सृष्टि के बाप माने राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा आत्माओं के बाप का परिचय पाती है। क्या कौन पाती है पहले? राम वाली आत्मा जो आत्माओं में बड़ा भाई है, है या नहीं? तो दादा हुआ कि नहीं है? और बाप कौन हुआ आत्माओं के बीच? शिव बाप। अभी तक बाप दादा किसको कहते थे है? उनको बाप दादा। लेकिन उससे भी पहले अव्वल नंबर के बाप दादा कौन है? शिव बाप, बाप और राम वाली आत्मा दादा, सबसे बड़ा भाई। शिव बाप आएगा तो अपना वर्षा बड़े बच्चे को देगा या छोटे बच्चों को देगा? दुनिया में ये परंपरा चली आई क्या? हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए इंडिया में, सबने अपना वर्षा राजाई का किसको दिया? बड़े बच्चों को दिया। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्व से, मेरे रास्ते का ही दुनिया अनुगमन करती है जो भगवान ने रास्ता बनाया। तो देखो शिव बाप ने अपना वर्षा मुक्ति का किसको दिया है? हाँ, बड़े बच्चे को दिया। बड़ा बच्चा कौन?
राम वाली आत्मा को दिया। राम वाली आत्मा ने जो भी दादा लेखराज द्वारा जो मुरलियां शिव की आई, उन मुरलियों का मनन चिंतन मंथन किया या कोई और आत्मा ने भी किया? मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट को पहचानने की बात है, उन्हें पहचाना। पहले 7 वर्षों में 76 से लेकर के 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 तक कोई मनुष्य मात्र ने पहचाना अपने पार्ट को कि षष्ठ रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है? अरे पहचाना? अरे क्यों नहीं कहते कृष्ण वाली आत्मा ने पहचाना? जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है उसने नहीं पहचाना? वो नहीं कहता था कि मैं सतयुग में जाके प्रिंस बनूंगा, कृष्ण बनूंगा? नहीं पहचाना? पहचाना कि नहीं पहचाना है? पहचाना, लेकिन वो साथ साथ ये भी अभी तक मानता चला आ रहा है कि मैं ही गीता का साकार भगवान हूं। तो पहचाना? नहीं पहचाना। हम कह करके बैठ गया आत्मा सो परमात्मा कह के बैठ गया, तो उसने पहचाना या मुगालते में आ गया है? मुगालते में आ गया। पहचाना ना पहचाना बराबर हो गया। जैसे इस मनुष्य शिष्य में आज भी लोग कहते हैं शिवो हम आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो ईश्वर बाप को पहचाना या मुगालती में आ गए? मुगालती में आ गए। तो जिसने पहचाना आत्माओं के बाप को और पहचान करके उसकी जो पहली पढ़ाई है, आत्मा के बाप की पहली पढ़ाई क्या है? है? मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तुम आत्मा, मैं हूँ आत्मा, क्या ये आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिकल में टिक जाने की पढ़ाई, जिस स्थिति में आत्मा ज्योति बिंदु के सिवाय कोई संकल्प ना आवे, निसंकल्प, ऐसी स्टेज बने तो पढ़ाई प्रैक्टिकल में हुई। अगर घड़ी घड़ी दूसरे संकल्प आ जाते हैं, देह के, देहधारियों के, देह के पदार्थों के, देह के संबंधियों के संकल्प आते जाते रहते हैं, तो कहेंगे आत्मा बने?
नहीं
है? कम से कम 4-6 मिनट तो बने। कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए? अरे बाप का बच्चा बने कितने साल हो गए? मनुष्य सृष्टि के बाप का बच्चा बने या नहीं बने हैं? तो सबका अपना अपना अलग है क्या? हम इतने साल के बच्चे हो गए क्या? हम इतने साल के बच्चे हो गए जब से हमने बाप के घर में जाकर के निश्चय रूपी जन्म लिया। बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है तभी बच्चा कहा जाता है ना। प्रत्यक्षता रूपी जन्म न हो, पेट में ही रहे तो जन्म कहा जाता है? तो हरेक आत्मा जो भी एडवांस में है वो बाप का बच्चा बनी, निराकारी बाप का। किसका बच्चा बनी? वो निराकारी बाप मनुष्य सृष्टि का, जो निराकारी स्टेज में आपको अपने को स्थिर कर लेता है। कितने लंबे समय से अद्वैतवाणी में बोला, क्या प्रैक्टिस करो? क्या प्रैक्टिस है? अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। तो कोई तो मुरली की वो बात को पकड़ के कान में रखेगा या नहीं रखेगा, या फालतू ही बोल दिया है? है? कोई तो रखेगा। तो जो रखने वाले नंबरवार बच्चे हैं वो 40 साल के बाद 8 प्रत्यक्ष होते हैं। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। जो मुरली में बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 50 वर्ष कब पूरे होंगे? है
2028 में।
जब वो वर्ष पूरे होंगे तो तुम बच्चों का माला रूपी संगठन तैयार हो जाएगा और तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, स्थूल माला का हार बनेंगे। यह प्रैक्टिकल में भी हार बने हैं, जैसे बच्चा बाप के गले का हार बन जाता है, है? प्रैक्टिकल में हार बने होंगे, प्रैक्टिकल में संग का रंग लिया होगा तब बनेंगे या ऐसे ही बन जाएंगे? है? प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में बाप का वो बच्चा, जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, आत्मा का धंधा और देह का धंधा, देहधारी बापों का धंधा और आत्मिक स्टेज में जो स्थिर हो जाए, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है, उस बाप का बच्चा बनना प्रैक्टिकल में होगा तब ही बच्चा बनेंगे या बिना प्रैक्टिकल के बच्चा बन जाएंगे?
प्रैक्टिकल में
कैसे प्रैक्टिकल होगा? अरे अरे पहचानना पड़े, पहचाना ही नहीं अभी तक, निश्चय होना अभी निश्चय ही नहीं हुआ, निश्चय पत्र क्यों लिख दिया झूठा लो है बाप को ब्लफ देने के लिए? अभी ब्राह्मण है, नीची कुरी के ब्राह्मण है, ऊंची कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण नहीं बने, वो सूर्य के बच्चे नहीं बने जिसके लिए गीता में लिखा है मैं जब आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ? पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, उस सूर्य के बच्चे नहीं बने अभी। आज निश्चय कल अनिश्चय, और अभी आखिरी साल आ गई, 40 साल पूरे हो रहे हैं, तो माया का फाइनल पेपर होगा तो फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे? तो फिर है मैंने आप पक्का कर लिया है कि हम 16,000 में नंबर वार 16,000 नंबर लेंगे, ऐसा वो भी नहीं हुआ तो 9,00,000 में नंबर ले लेंगे, 9,00,000 तो आत्मा बनेंगे ही है, 4,50,000 प्रवेश करने वाले और 4,50,000 वो जिनमें प्रवेश होता है, वो सारे 9,00,000 आत्मिक स्थिति में महामृत्यु महाविनाश होने के टाइम तक अंतिम समय तक आत्मा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, तो पक्का कर लिया कि नंबर वार ही रहेंगे। ये तो बड़ी जल्दी हाई जंप लगा दी। अच्छा तो सब लोगों को कोई कोई को वो गड़बड़ हो रही होगी अंदर अंदर घर जाने की है? नहीं चलो तो वो राजाओं की बात हो रही थी कि राजाएं अपने घर में मंदिर बनाते हैं और मंदिर में जाकर के माथा जरूर टेकते हैं, उसकी शूटिंग कहाँ करेंगे? यहाँ संगम युग में वो राजाएं शूटिंग कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? है अपने मन मंदिर में किसको बसा के रखेंगे? कौन सी मूर्ति बसा के रखेंगे? जिन बच्चों के लिए बाबा ने बोला जो पति से पावन बनते नहीं है वो मेरे को बुलाते नहीं है, बाबा जल्दी आ जाओ हमारी अवस्था खराब हो रही है, वो बुलाते भी नहीं है। जो पति से पावन बनते हैं वो मेरे को बुलाते भी हैं। क्या कहकर के बुलाती है? पति तो पावन सीताराम का नाम ऐड करते, राधा कृष्ण का नाम तो नहीं ऐड करते हैं? करते हैं? नहीं करते। सीताराम का ही गायन है, हे पतित पावन आओ, इसका मतलब राम सीता की आत्माएं निमित्त बनती हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। कैसे निमित्त बनती हैं? साकार में या निराकार में या आकार में? भूत प्रेत बन के साकार में निमित्त बनती है, उनके संग के रंग में आकर के तुम बच्चे क्या क्या करते हो? संग के रंग में आकर पतित से पावन, ये है संग के रंग की बलिहारी। दुनिया के सारे धंधे छोड़ करके बाप का धंधा करेंगे, बाप के संग रहेंगे तो संग का रंग भी लगेगा और दुनिया का अन्न दोष वो भी नहीं लगेगा। क्या संग दोष और अन्न दोष से बचे रहेंगे या लगे रहेंगे? बचे रहेंगे। संग दोष और अन्न दोष की बलिहारी है, द्वापर युग से संग दोष और अन्न दोष में आ गए, विधर्मी धर्म पिताओं के संग दोष अन्न दोष में। क्या जो विधर्मी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स स्वर्ग को देखते भी नहीं, देखते हैं है? वो तो द्वापर में आते हैं परमधाम, स्वर्ग खत्म हो जाता है, देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, ऐसे नास्तिक बन जाते हैं। तो उनके संग के रंग में आने से हम भारतवासी क्या देवता से हिंदू अपन को कहलाने लगे और हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। दूसरे धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं होते, भारतवासी जो देव आत्माएं थी वो ही द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, कन्वर्ट होती रही और भारतवासियों की दुनिया में संख्या कम हो गई और दुनिया वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। अब क्या करें, तो दुनिया वाले हमारे ऊपर हावी हो गए, हम दुनिया वालों के गुलाम बन गए। क्या कैसे गुलाम? कैसे गुलाम? जो खिलाए, पैकेट वाला भोजन, क्या फास्ट फूड, उसके खाने के आदि बन गए। डबल रोटी खाएंगे, खाएंगे कि नहीं? पसंद आती है कि नहीं? वाह। दूध पिएंगे तो जर्सी गाय का दूध पिएंगे जो विदेशों से आई है। क्या जिस जर्सी गाय का दूध पीने से दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही, देसी गाय का दूध नहीं पी, देसी गायों को काटने के लिए डाल देंगे किसके पास? मुसलमानों, कसाईयों के पास। बाप कहते हैं उन जानवर गऊओं की बात ही नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में उन्होंने अपना लिया है जानवर गऊओं को। कौन सी गऊओं की बात है? हैं? ये चैतन्य गऊओं की बात है। इन चैतन्य गऊओं की जो कसाई घर बनाए हुए हैं, बाबा कहते हैं धर्मशालाएं, उनमें शादियां होती हैं कि नहीं? वो कोस घर हैं, शादियां करा करके उन गऊओं को काट देते हैं। क्या उनकी आदत जो है वो जो राक्षसी इंद्रियों का सुख है, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने का आदि बनाए देते हैं, समझो मर गई। फिर दुनिया में उन्हें कुछ भी कोई ईश्वर का ज्ञान अच्छा
اچھا نہیں لگتا، ایسا بنائے دیتے ہیں، گو کسی کر دیتے ہیں۔ ابھی بھکتی مارگ میں بھی آندولن شروع ہوا، کیا گو کسی بند کرو، ان میں خاص کون کی آواز آتی ہے؟ جے گردیو، کس کی آواز؟ جے گردیو۔ اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت کا پردھان منتری، کیا کیا نام؟ نریندر مودی۔ نر مانے منشیہ، اندر مانے راجا، منشیوں کا راجا نریندر مودی، جس راجا نے سب کی بدھی موڑ دی، وہ حد کا نریندر مودی ہے جس نے انڈیا والوں کی بدھی موڑ دی۔ ارے ابھی تو بے حد کا باپو، بے حد کا نریندر مودی آیا ہوا ہے جو ساری دنیا کی بدھی موڑنے والا ہے، وہ بھی سپورٹ کرتا ہے کہ بے حد کی گہوں کا کوس کرنا بند کرو، یہ تمہاری اما ہے۔ اما کون ہے؟ اما ہے نا، اماؤں کے ساتھ کرشن بچے جیسا ویوہار مت کرو۔ کرشن کیا کرتا ہے؟ کرشن کیا کر رہا ہے؟ گیتا ماتا کا پتی بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ برہما کماریاں کیا سمجھتی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں گیتا ماتا کا پتی، گیتا پتی بھگوان کرشن والی آپ؟ باپ کہتے ہیں یہ سارا الٹا چکر گھوم گیا، مایا نے یہ چکر گھمایا، اب تم بچے اس چکر کو چینج کر دو۔ کیا کرو؟ گیتا کا بھگوان کرشن نہیں ہے، گیتا پتی بھگوان، گیتا ماتا کے اوپر کنٹرول کرنے والا بھگوان کرشن نہیں ہے، جیسے آج کی ماتائیں سمجھ بیٹھی ہیں۔ کیا کیا سمجھ بیٹھی ہیں؟ ہمارے جو بچے ہیں وہی ہم کو کنٹرول کریں۔ خدا نہ خواستہ پتی نے شریر چھوڑ دیا تو ماتائیں کس کا آدھار لے لیتی ہیں؟ ساری پراپرٹی ان کے نام ارپن کر دی۔ بچہ کہے گا یہ چاہیے، ہاں بچہ لے، تمہارے اوپر 100% وشواس۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کان پکڑ کے باہر کر دیتی ہے۔ ایسے ایسے راکشسی بچے ہیں، کس کو فالو کرنے والے ہیں؟ کرشن کو فالو کرنے والے ہیں، جو اپن کو پتی پرمیشور اما کا بنائے کے بیٹھے ہیں۔ ظلم کر دیا، مرلی میں بولا، کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا، کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں، ماں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ نہیں تو ہسٹری کہتی ہے پرانے زمانے میں بھارت میں ماتا کا کتنا مان دیتے تھے، باپ اگر مر جائے تو ماتا کے کنٹرول میں رہنے میں بچے اپن کو بہت بھاگیشالی سمجھتے ہیں۔ کیا کس کی رہبری میں پل رہے ہیں؟ ماتا کی رہبری میں پل رہے ہیں۔ ابھی دیکھو ودیشیوں کے سنگ کے رنگ میں آ کر کے ہم کیا بن گئے، کیا سے کیا تھے اور کیا بن گئے، اونچ تے اونچ وچار دھارا والے تھے اور نیچ تے نیچ بن گئے۔ کیا نیچ تے نیچ؟ کون سا دھرم ہے؟ ناستک دھرم، رسیا۔ کیسا نیچ تے نیچ؟ اتنا اہنکار بھرا ہوا ہے کہ نشٹ کرنے کے لیے ہم ایسی چیز تیار کریں گے جو ایک سیکنڈ میں ہم ختم کر دیں تمہارا دیش کا دیش۔ کیا چیز بنائی؟ ایٹم بم بنائے تھا۔ یہ بھی غصے میں آ کر کے دھیان نہیں رہتا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم سب سے نیچا کام کر دیا، چانڈال بن گئے۔ جیسے بابا مرلی میں کہتے ہیں اگر کرودھ آتا ہے تو اپن کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا؟ میں چانڈال کا جنم لینے والا ہوں۔ جتنی بار آپ کرودھ کریں گے بابا کے کہنے کے بعد उतनी बार अगर क्रोध करते रहेंगे तो क्या बनेंगे, कितने जन्म होंगे चांडाल के। अरे बाबा ऊंचे थे, ऊंचा राजा बनाने चांडालों से भी ऊंचे होते हैं वो चांडाल जो राजघराने के चांडाल होते हैं। उन राजघरानों के चांडालों से ऊंचे होते हैं दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दासी, फर्स्ट क्लास दास दासी। जैसे राम सीता वाली आत्माएं दास दासी बनती हैं राधा कृष्ण, वो है फर्स्ट क्लास दास दासी। और दास दासियों से भी ऊंचा पद होता है राज्य में राज्याधिकारियों का, होता है या नहीं, राज्याधिकारियों, राज्याधिकारियों से भी ऊंचा पद होता है रानी का, और रानी से भी ऊंचा पद होता है नहीं राजमाता का, और राजमाता से भी ऊंचा पद होता है राजा का, राजा से भी ऊंचा पद होता है महाराजा का। तो देखो बाबा की वाणी सुनेंगे रोज लेकिन बुद्धि में नहीं रहती है, भूल जाते हैं, बुद्धि हजार नियामत है, भगवान की दी हुई देन, इस जन्म में हमको क्या चीज मिली हुई है, है? भगवान ने जो देन हमको दी है हर एक को अलग अलग, क्या चीज मिली है, बुद्धि वरदान है, भगवान का जन्म से मिला हुआ वरदान, बुद्धि हजार नियामत मिली है। अरे बुद्धि से सोचो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का बताया हुआ रास्ते पर चल रहे हैं या माया ठगनी, माया रावण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रूप क्या, माया रावण उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, किसके रास्ते पर चल रहे हैं, माया के रास्ते। अरे हमें भगवान मिला हुआ है, अभी रस्सा कसी का खेल हो रहा है, क्या एक तरफ राम संप्रदाय और दूसरी तरफ रावण संप्रदाय, रावण संप्रदाय का संग करने से कानों से उनकी बातें सुनने से क्या होता है, जो रावण संप्रदाय ज्ञान में चलने का दिखावा तो करते हैं लेकिन अंदर से ऐसे काम करते हैं कि भगवान का चलता हुआ ज्ञान आज ही फेल हो जाए, ऐसे विरोधी बनकर के रहे और अभी भी हैं। उनका संग का रंग करेंगे तो क्या हाल होगा, है? उनकी बातें सुनेंगे तो वो तो हमें उल्टा कर देंगे, तजाओ मन हर विमुखन करो संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग, क्या हे मन क्या करो, क्या करो, हाँ जो जिनके साथ रह करके कुमति पैदा होती है, दुष्ट बुद्धि बनती है, श्रीमत के बरखिलाफ हम चल पड़ते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते के बरखिलाफ चल पड़ते हैं। भगवान ने कौन सा रास्ता बताया, अव्वल नंबर का वो महावाक्य बताओ जो ऊंचे से ऊंचा महावाक्य बताया, नहीं याद रहा किसी को। अरे ऊंचे थे ऊंचा एक ही मंत्र बताया, भूल गए, मन मना भव, क्या बताया, मेरे मन में समा जा, मन भव का मतलब क्या है, मतलब मन मना भव का मतलब क्या हुआ, मेरे मन में समा जा, कौन बोला,
राम बाप ने बोला,
कौन सी आत्मा बोली मेरे मन में समा जा, है शिव बाप तो बोल ही नहीं सकता, शिव बाप को तो मन है ही नहीं, उसको इंद्रियां भी नहीं, इंद्रियों का मुखिया मन भी नहीं, इंद्रियों को अभी चलाने वाला कौन सी ग्यारहवीं इंद्रिय, मन, वो भी नहीं, ये मन तो घोड़ा है बिना लगाम का, जिसको बुद्धि रूपी लगाम ही नहीं लगी हुई है, अरे बैल कहो बैल, बैल भी नहीं, सांड कहो सांड, सांड को लगाम लगी होती है, सांड जो गायों से बच्चा पैदा करता है उसको लगाम होती है, नाथ होती है? नहीं होती। तो बोला ये मन तो सांड है, ये मन तो घोड़ा है बिना लगाम का, ये तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा, ले जा रहा है। ये मन रूपी जो घोड़ा है, बैल है, वो भी शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। दिखाया जाता कि नहीं है? उसका मुंह किस तरफ है? है? उसका मुंह ही नाली की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो जो माता है, जगत जननी है, जलाधारी है, जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली माता है, उसको गीतापति भगवान बन के बैठा हुआ है। क्या बन गया उसका? उसका पति बन करके बैठा हुआ है। पति बन करके उस जगदम्बा माता जो तामसी बनती है, महाकाली बनती है, उसके मस्तक पर विराजमान होके राजा बन के बैठ जाता है। सारी माताएं ये अनुभव करती हैं। क्या? कि मेरा बच्चा मेरे को पूरी तरह कंट्रोल करता है, सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोलो, अनुभव करती है कि नहीं? आज की दुनिया में करती है। तो अभी बाबा कहता है कि बच्चे उस बैल को पहचानो, सांड को पहचानो जो बैलबाजी कर रहा है। किसके अंदर है? है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बैलबाजी कर रहा है। अभी वो बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अभी क्या है? वो बैल शंकर पर सवार है। उल्टा हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं जब शंकर है, हाई जंप लगा करके याद में क्या बैल पर सवार हो जाएगा? क्या? किस पर सवार हो जाएगा? बैल पर सवार हो जाएगा। तब वो ऊंचे थे ऊंचा बाप शिव, उसकी महाशिवरात्रि गाई जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? है? हाँ जी, वो कृष्ण वाली आत्मा कहो, बैल कहो, सांड कहो, घोड़ा कहो, बिना लगाम वाला, जिसको बुद्धि रूपी लगाम ही नहीं पकड़ी है उसने, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को पहचाना ही नहीं, ऐसा बेलगाम वाला घोड़ा जब शंकर की लगाम में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो महाशिवरात्रि गाई जाती है। माने उस रात्रि में सब अज्ञान अंधकार में सो जाते हैं। अरे सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में पहले से ही सोई हुई थी, 500-700 करोड़ की सोई हुई थी या नहीं है? लेकिन जो अपन को ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण कहते हैं, कोई भी कुरी के हो, वो भी अज्ञान अंधकार में समा जाएंगे। ऐसा माया फाइनल पेपर लेगी। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आदि में जैसे गायन हुआ, राम फेल हो गया, वो अकेला ही फेल होता है। माया किसी को छोड़ती नहीं। तो वो फाइनल पेपर अभी हुआ, अभी होने वाला है। जो आवाजें भी आ रही हैं, क्या जो संगम युगी कृष्ण है, शास्त्रों में जिसका गायन है कि जरासिंध ही उसके ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे थे, क्या अनगिनत बार आक्रमण कर रहे थे, उसे कृष्ण ने अपनी प्रजा को उस त्रास से बचाने के लिए क्या किया है? जी नहीं, वो तो उठाया समंदर के पार चला गया, द्वारकापुरी में जाकर के राजधानी बसाई। कहाँ बसाई? दो अरिका। क्या दो अरिका कहो, द्वापर युग कहो। द्वारिका कहो, द्वापर कहो, जहाँ दो दो पुर बन जाते हैं, दो दो राजाएं बन जाते हैं, दो दो राज्य बन जाते हैं, दो दो धर्म होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें होती हैं, ऐसी दुनिया में जाकर के राजधानी जमा दी। जरासंध से बचाव हो गया, फिर जरासंध ने कोई आक्रमण नहीं किया तो क्या होगा? है? अकाल पड़ेगा या भारतवासी सरसब्ज बनेंगे? क्या होगा? है? कैसे? बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, आगे चल के ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा जो पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे, दो टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होंगे। ऐसा अकाल पड़ेगा। बोला, तुम बच्चे मत घबराओ। क्या कहा? कौन बच्चे? तुम बच्चे। कौन से बच्चे? हैं? जो बाप का धंधा, सौ बच्चों का धंधा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ऐसे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। मुरली में कई बार बोला, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अरे कौन से बच्चे? दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे, दूसरे धर्मों का देह अभिमान का छिलका चढ़ाने वाले बच्चे। किसी धर्म वाले होंगे तो उन पर कौन सा छिलका चढ़ा हुआ होगा? अरे क्रोध का छिलका चढ़ा हुआ होगा। जैसे बहुत मोटा छिलका चढ़ा हुआ होता है तो उसको डंडे से पीटते हैं तब उस छिलका उतरता है, जैसे सिंघाड़ा है, है? पानी में पैदा होता है, पक जाता है, तोड़ लिया, छत पे सुखा लिया, फिर तुम उसको तोड़ना चाहो हाथों से तो वो छिलका नहीं टूटता। क्या करते हैं? हर धर्मराज के डंडे बजेंगे फिर वो टूट जाता है। बाप भी कहते हैं, बच्चे कैसे ले जाऊंगा? है? मच्छरों से दस ले जाऊंगा। जैसे मच्छर में देवान रूपी मांस होता ही नहीं। मच्छर में मांस होता है? अगर मांस होता तो लोग, चीनी लोग तो उसको भी पका के खा जाते, उसमें मांस होता ही नहीं। तो तुम्हारा देह अभिमान रूपी मांस खत्म करा के ले जाऊंगा मच्छरों से। इसलिए जल्दी सुधरना अच्छा है। बाप आया हुआ है, बाप की रहबरी में रहकर सुधरना अच्छा है या वो राक्षसों की रहबरी में सुधरना है? क्योंकि संस्कृत के बाद तो वो राक्षस सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर के बैठे हुए होंगे। कौन सी दुनिया को? वो सारी दुनिया को, जो 108 की माला के भांति नहीं बने होंगे, बाप के गले के मण के नहीं बने होंगे, उन सब को अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो बाप का प्यार अच्छा नहीं लगता है? बाप का प्यार प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? भगवान प्यार का सागर है। ऐसे नहीं कोई कहता धर्मराज प्यार का सागर है, भगवान प्यार का सागर है, धर्मराज तो कहे मार का सागर। और धर्मराज का चित्र भी कैसे दिखाया जाता है अष्टदेव में?
चित्र देखा है आठ देवों का है? कैसा भयंकर चित्र है, भैंसे पर सवार। तो बाप कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो राजाएं हैं वो मंदिर आज भी अपने घर में बनाते हैं और माथा टेकते हैं। किसको? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माथा टेकते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ये मन मंदिर में किसको बसाते हैं? निराकार शिव बिंदु को बसाते हैं या लक्ष्मी नारायण की बार बार याद आती है? आओ 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 हे पति तो पावन आओ, किसको बुलाते हैं? है? तुम भारतवासी बुलाते हैं। जो विदेशी विधर्मी पतित से पावन बनते ही नहीं वो मेरे को बुलाते ही नहीं। तो जो बच्चे बुलाते हैं वो बच्चे वहाँ शूटिंग करते हैं भक्ति मार्ग में, कि अपने घर में मंदिर बनाते हैं चाहे कैसे भी गिरी हुई दुनिया बन जाए, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज चल जाए, फिर भी अपने घर में मंदिर बनावेंगे और उनकी पूजा करते हैं। तो देखो वो दो प्रकार के नारायण हैं, एक एक गिरती कला वाले नारायण और एक है सिर्फ चढ़ती कला वाला नारायण। कौन से युग में? संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। दोनों नारायणों में कोई फर्क है? वो भी राजा रानी, वो भी राजा रानी, वो भी महाराजा, वो भी महारानी। क्योंकि सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी ये तो प्रसिद्ध हुए हैं। तो महाराजा महारानी और राजा रानी तो ये भारत में होते हैं। क्या यहाँ महाराजाएं भी हुए और राजा रानी भी हुए? अभी जब मत्था टेकते हैं तो उन विचारों को ये समझ ही नहीं है ना, उनको तो बहुत बड़ा समझाना सहज है। क्या जो अपने घर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना करके आज माथा टेक रहे हैं उनको समझाना तुम बच्चों के लिए बहुत सहज है। तो तुम भी राजा और जिनको माथा टेकते हैं वो भी राजा, ये इसमें इसमें क्या फर्क है? इन्होंने वो राजाई कैसे प्राप्त की? इन्होंने जिनको माथा टेकते हैं अपने घर में मंदिर बना करके उन्होंने वो राजाई कैसे प्राप्त की? जवाब दो। है कैसे? हाँ, पुरुष माने आत्मा के लिए करना है। जो कुछ करना है किसके लिए? आत्मा के लिए। देह के लिए कुछ भी नहीं करना। ऐसी स्टेज बन जाएगी तब राजा महाराजा बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये कैसे का जवाब हुआ? क्या राजाई कैसे प्राप्त की? जब एड़ी से लेकर चोटी तक के पुरुषार्थ में ऐसी ताकत लगाई, कैसी कि पेट का, देह का, देह के संबंधियों का, देह से संपर्क जिनका किया जिंदगी में उनका, देह के पदार्थों का कोई परवाह नहीं की, ऐसा पुरुषार्थ किया लगाव पूर्वक। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे राजा ही प्राप्त की इन्होंने। वो पवित्र हैं, तुम अभी पवित्र हो। क्या
वो जिनकी पूजा करते हैं अपने घर में मंदिरों में बैठ करके, वो क्या है? वो पवित्र हैं। तुम पतित हो, ये क्या बात हुई? वो पवित्र हैं, हैं? वो पवित्र हैं। अरे जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं संगम में, वो पवित्र हैं, हैं?
अभी नहीं है,
अभी नहीं है। ये तो दो बातें हो गई, फैसला करो, वोट डालो।
पुरुषार्थ कैसे हो रहे
हैं? हैं?
पवित्र हो रहे हैं पुरुषार्थ के द्वारा।
पुरुष का अर्थ कर रहे हैं, पुरुष अर्थ कर रहे हैं, देह के अर्थ नहीं कर रहे। देह के अर्थ कर रहे हैं या पुरुष माने आत्मा के अर्थ कर रहे हैं?
आत्मा के अर्थ।
तो
संपूर्ण
जब सारा पुरुषार्थ देह के अर्थ न करके, देह की परवाह न करके आत्मा के ही अर्थ करेंगे सब कुछ, तन से मन से धन से, तो पवित्र हुए या अपवित्र हुए? लक्ष्य सही है या गलत है? सही लक्ष्य है, पवित्र है, क्योंकि संकल्प मात्र अंदर पवित्रता का फाउंडेशन का है या अपवित्रता का फाउंडेशन है? लक्ष्य क्या है? पवित्र बनने का लक्ष्य है। भले साइकिल पर चढ़ने वाला बार बार गिरता भी है तो भी हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हिम्मत। हारे हार है, हिम्मत के जीते जीते। हिम्मत हार गया तो हार हो गई, हिम्मत नहीं हारे तो ये नहीं कहा जा सकता कि हार गए। हार गए ये पक्का है या जीत निश्चित है? जीत निश्चित है। तो वो पवित्र हैं, तुम पतित हो। तो इन्हों को राजाई, ये जो पवित्र थे उनका घराना कहां गया? जिनकी पूजा करते हैं घर में मंदिर बनाकर लक्ष्मी नारायण की, उनका घराना कहां गया? घर के वो भांति कहां गए जिनको गले लगा करके बच्चों की तरह खिलाया था, चलाया था, परवरिश की थी, वो कहां गए? कहां गए? अरे कहां गए? ऊपर हैं या पाताल में हैं? कहां गए? ध्यान में नहीं आ रहा? अरे यही बैठे हैं कि कहीं चले गए, ऊपर नीचे चले गए?
यही बैठे हैं।
हाँ फिर उनका घराना कहाँ गया? माने घर के जो भांति थे संगम में जब वो नर से नारायण बने थे, तो उनका पूरा घराना कहाँ गया? परिवार कहाँ गया? जो गले के हार बने थे, वो गले के हार सुने हैं ना? हार नहीं सुने? 800 सर के ऊपर बैठे हैं, 108 माला गले में लटके बैठे हैं, 16,000 बाहों में मालाएं पड़ी हुई हैं। चित्र नहीं देखा? देखा ना? तो वो उनका सारा घराना है, परिवार है, राज घराना। कैसा घराना? जो राजाएं बनने वाले हैं, कम से कम राजाएं नहीं बनेंगे तो प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे, कोई न कोई जन्म। कम से कम त्रेता के अंत में 16,000 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या जरूर पूरी हो जाएगी। वो राजघराना है सारा, 16,000 का कहो, 108 का कहो, 1,008 ब्रह्मा की भुजाओं का कहो, 8 का कहो, तो वो घराना कहाँ गया? कहाँ गया? हैं? अरे यहीं बैठे हैं ना, ये नहीं बुद्धि में आता, कि हम ही उस घराने के थे, ये बात भी बुद्धि में से उड़ गई, हाँ? उड़ गई
है?
क्या लुप्त हो गया?
पूरा है अभी।
पूरा क्या है?
पूरा लुप्त नहीं हुआ।
पूरा लोप नहीं हुआ, कोने में कुर्सी पे बैठा है अभी, है एक। उन विचारों को ये तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम वही घराने वाले पावन बन गए हैं। क्या कहा? बन गए हैं। किनकी बात की है? हाँ, जो नर से नारायण बनने वाले, जिनकी राजाएं घर में बैठ करके मंदिर बना करके पूजा करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है। क्या है? मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसी स्टेज पकड़ तो लेते हैं पुरुषार्थ की, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम वही घराने वाले पावन बन गए हैं। क्या? पावन बन गए हैं, तो उनका संग का रंग लेने से पावन बनेंगे या पतित बनेंगे, पहचान के या बिना पहचाने? पहले पहचाने कि हाँ, उनकी पुरुषार्थ की जो गति है वो ऐसी है कि कैसी, कैसा पुरुषार्थ है? तन का नहीं, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तन के लिए नहीं करते हैं जो कुछ करते हैं, किसके लिए करते हैं? आत्मा का उद्धार करने के लिए करते हैं। जो गीता में कहा, उद्धरेत आत्मा आत्मानम उद्धरेत, ज्योति बिंदु आत्मा को उत्त माने ऊपर हरण करके ले जाए। मन बुद्ध, अरे भाई इधर उधर एक तरफ ध्यान दो। क्या कहा है? जो ध्यान खींचने वाले हैं वो तो अपना पाप बना ही रहे हैं। उनसे 20 बार कहो क्या ये मोबाइल घर में रख के आओ या तो बंद कर दो, वो नहीं मानेंगे। उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, अपने को कंट्रोल करना है। तो क्या बताया है? उन नर से नारायण बनने वाले जो पूजा ले रहे हैं भक्ति मार्ग में, राजाओं से, राजाओं के घर में मंदिर बनकर बना करके जिनको बैठाया गया है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम वही घराने वाले अभी पावन बन गए। किस आधार पर बताया पावन बन गए? पुरुषार्थ के आधार पर। कैसा पुरुषार्थ? पुरुष अर्थ, काय के अर्थ, आत्मा। जो कुछ भी करेंगे किसके लिए करेंगे? आत्मा के कल्याण के लिए करेंगे। इंद्रियों से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आत्मा का पतन हो जाए। नहीं समझ में आ रहा? अरे ये कि ही सत्संग दुनिया में ऐसा है जिसमें छूट है। अगर कोई संशय आता है तो पूछना चाहिए। क्या? जो गीता में लिखा है, परिप्रश्न न सेवया, प्रश्नोत्तर की सेवा करके हर बात को हल करना चाहिए। तो ये भी तो आकर के सुनेंगे तो सही ना। एक दिन बच्ची कौन, किसके लिए बताया? ब्रह्मा बाबा के मुख से 66 में बोला। क्या बोला? कि ये नर से नारायण बनने वाले बच्चे भी एक दिन आव करके सुनेंगे तो सही ना। झूठ बोला है? बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि आगे चल के भविष्य में, निकट भविष्य में वो बच्चे आने वाले हैं और इस ज्ञान को सुनेंगे तो सही ना। एक दिन सुनेंगे, ये भी सुनेंगे, माना?
तुम बच्चे ही नहीं सुन रहे हो, क्यों सुनेंगे? ये नर से नारायण बनने वाले भी सुनेंगे। जब समझाएंगे कि यहाँ राजाओं का राजा बनते हैं, क्या क्या समझाएंगे कि यही एक सत्संग है जहाँ राजाओं का राजा बनते हैं, ये बात सुनाएंगे। अभी राजाओं को भी समझाना पड़े, क्या अभी तक तो जो प्रदर्शनियां कर रहे थे, मेले मला खड़े कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रोजेक्टर कर रहे थे, वो प्रजा निकाल रहे थे, क्या चक की बात बताई, या राजाओं को निकाल रहे थे, हैं? प्रजा को निकालने की सेवा कर रहे थे। अभी भी वो ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजा की सेवा कर रहे हैं या राजाओं को पढ़ाई पढ़ाने की सेवा कर रहे हैं? है?
प्रजा की कर रहे हैं,
प्रजा की सेवा कर रहे
हैं।
राजयोग तो उन्होंने सीखा ही नहीं, तो राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? तो उन राजाओं को भी समझाना पड़े, ये भी आएंगे एक दिन। कौन? जो राजाएं बनने वाले हैं, 108 गले का हार बनने वाले बच्चे, वो भी एक दिन आएंगे। ऐसे मत कोई समझे कि नहीं आएंगे। क्या वो सब बच्चे जो राजघराने के थे वो सब आएंगे? ऐसे मत समझो नहीं आएंगे, नहीं, दिल्ली में उनको भी निमंत्रण भेज देना चाहिए। क्या कहा? भविष्य के लिए ऑर्डर दिया मुरली ने, क्या कि दिल्ली में उनको भी निमंत्रण भेज देना चाहिए आने के लिए। ऑल इंडिया में बिखरे पड़े हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, गलत बोला है? अरे 66 की मुरली है ना, भविष्य के लिए बताया कि वो सब राजघराने में आने वाले आएंगे, दिल्ली में उनको भी निमंत्रण भेज देना चाहिए। दिल्ली में ही क्यों, माउंट आबू में क्यों नहीं है?
दिल्ली में ही रहते
हैं। हाँ, पिछले साल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने 2-4 अव्यक्त वाणियों में ये इशारा दिया, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, दिल्ली में सबको जाना पड़ेगा, तुम बच्चे भी दिल्ली में जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारियां बाबा का मुंह बंद कर रही थी, गुलजार दादी का, बाबा आप माउंट आबू में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं। समझते हैं बाबा की आत्मा बुद्धि हो गई, सारा भूल गई। अरे वो तो माता है ना, माता की वाणी है ना। अरे माता की इतनी अवज्ञा क्यों करते हैं, जैसे मुंह पे मुसीका लगाया जाता है, है? किसी का मुंह बंद करते हैं तो क्या करते हैं, मुंह पे मुसीका लगाई देते। तो उनको भी ऐसे लिखना है, उन राजघराने वाले राजाओं को, कि राजाओं का राजा लिखना है। अभी कोई ने लिखा नहीं है, उनको भी ऐसे लिखना है कि राजाओं का राजा यानी लक्ष्मी नारायण, जो ये पतित राजाओं का भी पावन राजा थे, वो कैसे बनते हैं? बनता है, बोला है, वो पतित राजाओं का राजा महाराजा कैसे बनता है, वो आकर के इस प्रदर्शनी से समझो। किस प्रदर्शनी से? 66 में जो प्रदर्शनी हो रही थी उसकी बात बताई। हाँ, अरे चैतन्य प्रदर्शनी, ऐसे चित्रों की प्रदर्शनी जिनमें छपा हुआ हो, बात बुद्धि में छपी हुई हो, सारा ज्ञान बुद्धि में छपा हुआ हो। बाबा क्या बोलते हैं? चित्र ऐसे बनाओ कैसे, जिनमें लिखत हो ज्ञान की। ऐसे चित्र जिनमें ज्ञान की कोई लिखत ही नहीं, ज्ञान का कोई छपावा ही नहीं, वो मत बनाओ। तो कैसे चित्रों की प्रदर्शनी बताई, जड़ चित्रों की या चैतन्य चित्रों की? कोई चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी बनाओ और लिखो कि इस प्रदर्शनी में आकर के समझो, जब निमंत्रण भेज देने का है, वो जो पूज्य थे राजा और महाराजा महारानी, सो पुजारी बन करके फिर अपने ही वो पास्ट जन्मों को कैसे पूजते हैं भक्ति मार्ग में, सो आओ हम तुम्हें समझाएं। ऐसे ही तो होते हैं ना बच्चे, आपे ही पूजिए, आपे ही पुजारी, चाहे वो शिवलिंग के रूप में हो, चाहे वो मूर्तिमान मूर्ति वाले देवताओं के रूप में हो, वो सब कैसे हैं? आपे ही पूज्य बनते हैं और आपे ही द्वापर युग से भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। वो खुद पूज्य राजा रानी और खुद पुजारी राजा रानी होकर के फिर अपने ही वो जन्मों को आत्माओं का जो पहले पहले है जन्म, उनको पूछते हैं। पहले पहले जन्म कौन सी युग में होता है? सदयुग। उनके चित्र बना करके द्वापर में भक्ति मार्ग में उनको पूछते हैं। ये कितनी समझ की बात है क्या? अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? है? अभी इस बात की शूटिंग भी हो रही है, समझ की बात है। राजाओं को भी समझाए तो सकते हैं ना? क्या जैसे प्रजावर्ग को समझा सकते हैं, राजाओं को नहीं समझा सकते? ऐसे तो नहीं कि नहीं समझा सकते हैं, चिट्ठी में भी समझाया जा सकता है क्या कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, आकर के देखो समझो कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। ये बात चिट्ठी में भी समझाई जा सकती है, तो ये सीढ़ी में ये भी बहुत क्लियर दिखलाना चाहिए कि बिगर लाइट वाले क्या कहा है, बिगर लाइट वाले भी चित्र हैं कि नहीं भक्ति मार्ग में? हैं बिगर लाइट वाले, वो लाइट वाले जो फिर ये राजा रानी हैं, जिनको पवित्रता का लाइट दिखाया गया है, अथवा यज्ञ की जिम्मेवारी का जिन्होंने ताज लाइट के रूप में दिखाते हैं ना, ताज धारण किया है, ये राजा रानी हैं, वो बनना ही लक्ष्मी नारायण का चाहिए चित्र। यहाँ जो पुजारी बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं है? अरे गुरु लोग क्या बनाते हैं? पूज्य देवता बनाते हैं कि पुजारी बनाते हैं? पुजारी बनाते हैं। और शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग भी हो रही है। क्या बना रहे हैं है? पूज्य बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं या पुजारी बना रहे हैं? पुजारी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य, उसमें फिर भी वही राजा रानी बिगर ताज बिगर वो लाइट के मत्था टेकते हैं, सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। प्रैक्टिकल में भी देखा जा सकता है क्या? क्या कि जो राजाएं हैं उनको ताज भी नहीं है, है? ताज है, जिम्मेवारी का भी ताज नहीं, फिर लाइट का भी ताज नहीं, वो मत्था टेकते हैं। बस ये बड़ी समझानी है इस बात की कि कौन पूज्य है और कैसे पुजारी। पुजारियों में भी नंबरवार और पूज्य में भी नंबरवार। ओम शांति।